So, happy Damodar Mass, आप सब भक्तों को दामोदर मास के लिए शुभकामनाएं. आशा है आप सब भक्तों का श्रवणम और कीर्तनम इस महीने में आप बढ़ाएंगे, जिसमें आप अधिक माला का जप कर सकते हो या अधिक कथा सुन सकते हो या फिर कुछ संस्कृत स्तुतियां गा सकते हो या फिर आप अधिक प्रचार कर सकते हो या फिर आप कुछ नियम बना सकते हो साधना से संबंधित, तो हम बंद कर सकते हो. आप दोनों बंद कर दीजिए, इसको भी थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा कम आएगा. हाँ, इसको भी. सब भक्तों को कुछ प्रयास करना चाहिए ये दामोदर मास में, ये हम उन चीज़ों से बचे कि जो हम जानते हैं कि ये गलत है. जनरली कुछ बुरी आदतें ऐसी होती है कि हमें पता है कि वो बुरी आदत है, किंतु हम आसक्ति के कारण उससे छूट नहीं पा रहे. हम आसक्त है उस चीज़ में, तो हमसे वो छूट नहीं हो पा रहा है, वो हम उससे अपने आप को बचा नहीं सकते और फिर माया के सामने हार मान लेते हैं, उसके चरणों में अपना शीश डाल देते हैं. ठीक है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो माया तुम जैसे करो वैसे ही हम करेंगे. लेकिन कम से कम एक महीने के लिए आप माया को ट्रिक कर सकते हो. एक महीने के लिए आप माया को कह सकते हो कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होगी, लेकिन कार्तिक मास खत्म होने के बाद. ऐसा आप कह सकते हो, तो कम से कम आप अपने मन से थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा कि कम से कम एक महीने तक तो पीछा छूटा माया से. सो ये आवश्यक होता है वैष्णव के लिए, इस प्रकार का जो व्रत या तप हम करते हैं कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, इससे आध्यात्मिक उत्साह बना रहता है. ऐसे साल में 2-3 अवसर आ सकते हैं, जैसे गौर पूर्णिमा का अवसर आता है, फिर आपका ये कौन सा महीना बहुत पवित्र माना जाता है, एक अधिक मास है, फिर ये श्रावण भी होता है, वैशाख मास. शास्त्र के आधार से वैशाख मास जो है वो उसमें किए गए जितने भी भक्ति के कार्य उसको मल्टीप्लाई हो जाता है वैशाख मास में, तो वो भी बड़ा पवित्र मास है. सो इस तरह से कृष्ण भक्ति में हमें अनेक अवसर प्राप्त होते हैं जिसमें हमारी भक्ति में थोड़ा सा बूस्टअप प्राप्त होता है, थोड़ा सा धक्का लगता है, ताकि हम और आगे बढ़ सकें तेजी से. सो पिछली बार हम चर्चा किए थे भगवद गीता के कुछ 8 या 9 श्लोक तक, तीसरे अध्याय के 8 श्लोक तक हमने पिछली बार चर्चा किए थे. आज हम सोच रहे हैं कि आप थोड़ा हम आपको तीसरे अध्याय से बताएंगे. हमारा प्रयास रहेगा कि अगले वीक अगर आप में से जितने भी उपस्थित हैं अगले गुरुवार को हम तीसरे अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे. और तीसरे अध्याय में योगा लैडर की चर्चा हुई है, तो जो हम सोच रहे थे कि आज हम आपसे थोड़ा योगा लैडर के विषय में चर्चा करेंगे, योग किसी भी, और पिछली बार हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे राइट करने होते हैं भक्तों को, आप सबको एक ऐसे राइट करना होता है, एक हर एक चैप्टर में से एक ऐसे करना होता है। तो ये ऐसे राइटिंग का जो गाइडलाइन है वो मैं सोच रहा था कि आपको अंत में थोड़ा बताएंगे कि ऐसे गाइडलाइन किस तरह से हमें लिखना है, क्योंकि ये गाइडलाइन हो सके तो आप नोट भी कर सकते हो, ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, आगे जाके भी बहुत फ़ायदा होगा। सो आई स्टार्ट विथ टेक्स्ट नंबर 9, लेकिन उसके पहले अभी तक जो चर्चा हुई थी उसमें भगवान ने कौन सी बात बताई थी, आप में से कोई शेयर करना चाहता है? नहीं, नहीं बताना चाहते।
कर्मयोग के बारे में बताएं।
हाँ,
कर्मयोग के बारे में,
कर्मयोग के बारे में और कोई बताना चाहते हैं? क्योंकि
हाँ, यस,
हम इस दो चीज़ क्यों बता रहे हैं, एक ही बताओ, जब कर आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो अननेसेसरी, है ना? यस प्रभु,
दो प्रकार से आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, एक तो ज्ञान मार्ग है, दूसरा भक्ति मार्ग है।
ओके, उस चीज में चर्चा थी, और कोई बताना चाहते हैं?
एक श्लोक में भी कहा है कि जो व्यक्ति केवल अपनी कर्मेंद्रियों को रोकता है लेकिन मन से तो विषयों की तरफ ध्यान रखता है, वो मिथ्याचारी है, उसकी कोई उन्नति नहीं हो सकती।
मिथ्याचारी व्यक्ति जनरली कैसा होता है, उसकी चर्चा हमने पिछली बार की थी डिटेल में, कि व्यक्ति के भीतर और कुछ चल रहा है और व्यक्ति कुछ और कुछ बता रहा है लोगों को, उसका आचरण और उसके प्रचार में अंतर होता है, मीन्स वो जो कहता है वो पालन नहीं करता। और मिथ्याचारी के विषय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसा कहा है कि एक मिथ्याचारी से वो सड़क पर झाड़ू वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम से कम वो प्रामाणिक है, वो जो करता है वो बताता भी है भाई, मैं अगर वो गलत काम करेगा तो भी बताता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। उससे वो झाड़ू वाला जो है वो जो ढोंगी बापू और जितने भी इस प्रकार के धर्मध्वजी हैं उन लोगों से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि मिथ्याचारी व्यक्ति के विषय में भगवान कहते हैं उसको कृपा नहीं मिल सकती, भगवान की कृपा नहीं मिल सकती उसको। और विशेष करके कृष्ण भक्त जो होता है, कई बार हमें भी ये आचरण देखा जाता है, मिथ्याचार का कहीं कुछ अंश हमें भी देखा जाता है। मिथ्याचार का कैसा अंश मिलता है, हम कुछ ऐसी बातें होते हैं कि जो हम किसी को नहीं बताना चाहते, अगर किसी को पता पड़ेगा मेरी असलियत क्या है कि मैं कैसा हूँ तो शर्म के मारे मेरा मुश्किल हो जाएगा रहना, मैं कुछ किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो ऐसे डर के कारण थोड़ा सा मिथ्याचार कहीं ना कहीं पाया जाता है भक्तों के भीतर। मैं इसलिए कह रहा हूँ भक्तों के भीतर, क्योंकि अभी भी हमारी भक्ति जो है वो परिपक्व नहीं है, हमारी भक्ति कच्ची है, और इसके कारण हमें वो जो धोखा देने की वृत्ति है वो हमें पाई जाती है, चीटिंग करना, गलत बोल देना। आजकल तो गलत बोलना बड़ा आसान हो गया है ना, कई बार मैं देखा है कोई बच्चे अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते गलत बोलने में, वैष्णव लोग अपने गुरुजन को भी नहीं छोड़ते गलत बोलने में, केवल भगवान के सामने गलत बोल नहीं सकता क्योंकि वो भगवान सब जानते हैं, लेकिन प्रयास तो वही रहता है कि भगवान भी एक बार ना देखे मेरी बात को तो अच्छा है। तो लेकिन आदत गत्वा जो धोखा देने का वृत्ति रखते हैं वो खुद को ही धोखा देके समाप्त करते अपने जीवन को। वास्तव में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कितना भी धोखा दे वो तो सुरक्षित ही रहेंगे, लेकिन धोखा देने वाला व्यक्ति है वो असुरक्षित हो जाता है। तो इसलिए प्रयास रहना चाहिए कि हम सत्यनिष्ठ रहे। अर्थात अगर आपको लगता है कि मैं बड़ा पापी हूँ तो मुझे बोल देना चाहिए कि मैं पापी हूँ। अगर आप मुझे लगता है कि मुझ में ये कमियाँ है तो उसमें बोलने में कोई हानि नहीं है कि मुझ में ये कमी है तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब हॉस्पिटल में अगर कोई व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो वो चुप रहेगा क्या कि मुझे बुखार आ रहा है? बोलेगा ना वो मुझे बुखार आ रहा है। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको बीमार लोग ही तो मिलेंगे, आप क्या वहाँ पर कोई फिट व्यक्ति, कोई तंदुरुस्त व्यक्ति आप ढूंढेंगे? नहीं, तो ये तो अस्पताल है संसार, तो यहाँ पर तो बीमार लोग ही मिलेंगे आपको। किसी का काम का प्रभाव ज़्यादा है, किसी का क्रोध का प्रभाव ज़्यादा है, किसी को लोभ का प्रभाव ज़्यादा है, किसी को मान प्रतिष्ठा की भावना ज़्यादा है, किसी को ईर्ष्या द्वेष की बीमारी है। तो ये बीमार लोग ही मिलेंगे हमें सब जगह। तो इसलिए इसमें कोई हानि नहीं है कि अगर हम अपनी वास्तविकता को छुपाए नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है।
मुझे क्वेश्चन।
हाँ पूछिए।
नॉर्मली ऐसा है कि भक्ति और माया तो दोनों भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी प्रशंसा के अंदर भक्ति करने वाले भी है, मानो के 95% को छोड़कर 5% तो है जो भक्ति करते हैं ऐसा समझ लेते हैं, पर 5% में से कुछ 2% है जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं। तो फिर भी ये 5% भक्तों के अंदर भी माया का प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या भक्ति इतनी पावरफुल है, भगवान की परम शक्ति है, फिर भी माया इतनी पावरफुल उस पर इफेक्ट करती है कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता है? आज कड़वा सच है कि लोग ये सोच के मंदिर में आते हैं और कुछ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होते हैं कि भी संसार के अंदर, समाज के अंदर माया है, सब ऐसे ऐसा एटमॉस्फेयर है, तो वहां जाएंगे तो हमको सुकून मिलेगा, कुछ नया एटमॉस्फेयर मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो फिर वही एटमॉस्फेयर जो बाहर दिखने को मिलता है वही वहां दिखने को मिलता है, तो बहुत दुख होता है। तो ऐसा होता है कि यहाँ भी वो वाल प्रोटेक्ट, वहां भी वो पैसे के लिए रो रहा है, यहाँ भी ये पैसे के पीछे भाग रहा है, तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है ऐसा लगता है। तो माया इतनी प्रबल है प्रभु जी कि भक्ति भी कम पड़ जाती है, पावर कम पड़ता है।
वेल, भक्ति का जो प्रभाव है, भक्ति का जो शक्ति है, वो कभी भी माया से कमजोर नहीं है, पहली बात। क्योंकि जैसे आप बताए कि 100 में से अगर आप 5% गिन ले सकते हो कि कोई 5% है, समझ लो उसमें से 1-2%, जैसे आप बता रहे कि 1-2% ऐसे है कि जो लोग बहुत ही गंभीर और सिंसियर है और जिनमें माया का प्रभाव बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन बाकी के जो भक्त है जैसे आप बता रहे थे एग्जांपल के रूप में, तो उन लोगों में माया का प्रभाव देखा जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में एडमिट होता है, अगर उसको दूसरे ही दिन आकर अगर आप पूछते हो तो आप स्वस्थ क्यों नहीं हो, हालांकि उसके नीजल लगाया हुआ है, सीरिंज लगाई हुई है, अभी तो बीमार है, दवाई शुरू हो गई है उसकी, लेकिन अब अस्पताल में है, एडमिट है, लेकिन अभी आप दूसरे तीसरे दिन आप डिस्चार्ज की बात नहीं कर सकते, आपको उसको वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो ठीक नहीं होता है। लेकिन अभी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको ठीक होने में टाइम लगता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको डॉक्टर की सब बात नहीं मानते, डॉक्टर ने कहा कि टाइम पे ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना करना है, ये नहीं करना है, तो जो लोग पूरा पालन करते हैं डॉक्टर के कहा, तो उसका तो जो डॉक्टर बताए टाइम लिमिट कि 10 दिन के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन अधिकतर पेशेंट ऐसे होते हैं कलयुग में कि जो लोग डॉक्टर की पूरी बात नहीं मानते, और डॉक्टर की बात नहीं मानते इसमें ना डॉक्टर का कोई प्रॉब्लम है और ना ही दवाई का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है उस पेशेंट में कि जो ठीक से पालन नहीं करता। लेकिन फिर भी वो पेशेंट जो बाकी के बीमार लोग हैं जो लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं उन लोगों से अच्छे हैं।
अच्छा,
उन लोगों से अच्छे हैं क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने दवाई तो शुरू कर दी, आज नहीं तो कल उनका इलाज तो हो ही जाएगा, ठीक तो हो ही जाएगा। इसलिए माया प्रबल तो अवश्य है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मेरी माया को लांघना, पार करना, वो केवल मेरी कृपा से ही हो सकता है, बाकी ऋषि मुनि भी कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े योगी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माया तो अवश्य प्रबल है, किंतु कई बार ये देखा जाता है कि हमारी जो पुरानी आदतें, पुरानी वृत्ति कृष्ण भक्ति में जुड़ने से पहले जो थी, वो कृष्ण भक्ति में जुड़ने के बाद भी देखी जाती है, क्योंकि वो अनेक अनेक जन्मों का रोग है और भक्ति हमने 2-5-10 साल शुरू किया है, फिर भी उसका प्रोसेस इतना फास्ट है कि ये अनादि जन्म कर्म जो है उसका सफाया बड़ी तेजी से होता है। लेकिन इसलिए तात्पर्य इसमें ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के मार्ग को जो 100% फॉलो करता है, जो गुरु आज्ञा को 100% फॉलो करता है, जो साधन भक्ति को 100% फॉलो करता है, उसकी जो शुद्धि है वो बड़ी तेज होती है, वो तेज हो जाता है। और उसमें जो समाज में वो आप बता रहे कि भक्तों के अंदर भी ऐसा देखा जाता है कि उसको वैसा ही दिखता है, लेकिन उसकी दृष्टि बदल जाती है। फिर जैसे अगर कोई व्यक्ति समाज में उसका अपमान करता है तो उसको बड़ा दुख लगता है, हाय हाय 3 दिन खाना नहीं है, भोजन नहीं लेगा और बड़ा दुखी पड़ा रहेगा मुँह लटका के, है ना। लेकिन कृष्ण भक्ति में जब कोई व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो परिणाम क्या आता है कि कृष्ण भक्त में भी अगर किसी डिवोटी ने आपको कुछ बोल दिया जिससे आपका अपमान हुआ है, लेकिन आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप त्रिनादपि का सिद्धांत समझ चुके हो कि मैं, मेरा उद्देश्य जीवन का है भगवान की प्रसन्नता, और मैं चैतन्य महाप्रभु के बताए गए शिक्षा अष्टकम में मैं अपने आप को घास के तिनके से भी अधिक तुच्छ मानना चाहता हूँ, वृक्ष से अधिक सहनशील बनना चाहता हूँ, दूसरे किसी को किसी का अपमान नहीं करके और सबको मान देना चाहता हूँ और अपने अपमान मान की कोई आशा नहीं, तो ये भावना जो है उसमें प्रकट हुई है, तो इसलिए उसको समस्या नहीं लगती। कृष्ण भक्तों के आपस के झगड़े में जिसको समस्या होती है वो केवल वही लोग होते हैं कि जिनकी कृष्ण भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है, इसलिए वो इससे विक्टिम हो जाते हैं। दो आपस में झगड़ा होता है तो सोचने लगता है कि भौतिक जगत में भी ऐसा था, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा है, ये कैसा न्याय है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अभी परिपक्व नहीं हुए इसलिए हमें ऐसा दिखता है। हम किसी की भावनाओं को, किसी की भगवान की जो भगवद्गीता का संदेश है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश, वो अपने ढंग से समझ नहीं पाए। कृष्ण भक्ति कभी दुख का स्रोत नहीं हो सकता है, कृष्ण भक्ति केवल सुख का ही स्रोत है, ये भगवान का अपना वचन है। इसलिए कभी भी कोई ये कहे आपको आगे जाके कि मुझे भक्ति करने में कठिनाई हो रही है और भक्तों के बीच में झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग और इस सब के कारण मुझे दुख हो रहा है, तो समझना चाहिए कि वो भक्त अभी भी परिपक्व नहीं हुए, उनको अधिक संघ की आवश्यकता है, उसको किसी भक्त के पास जाना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए कि मुझे किस तरह से अपने आप को ठीक करना चाहिए कि ताकि मैं भक्ति की महत्ता को समझ सकूं। और सब उद्देश्य से जो लोग आते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं, लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करने के ऐसे उद्देश्य से जीवन जीते हैं वो कभी दुखी नहीं होते।
मेरे मन में एक
हाँ बोलिए
जैसे ये समझने की भक्ति और माया दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं, एक भौतिक जगत की तरफ खींचती हैं, दूसरी भगवान जी की तरफ खींचती हैं, तो अगर उनकी दोनों की समान शक्ति भी मान लें तो हम एज ए जीव अगर थोड़ा सा भी प्रयास भक्ति की तरफ करेंगे तो इधर बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा और उधर थोड़ा वीक पड़ जाएगा। लेकिन होता क्या है सामान्यतः कि हम लोग कहते तो हैं कि हम उधर मुड़े हुए हैं लेकिन एक्चुअली उधर की तरफ मुड़के खींच रहे होते हैं। इसीलिए माया प्रबल हो जाती होगी।
बिकॉज यही बात तो वही है कि आप जेन्युइन कितने हैं, आप अपने प्रयास में कितने जेन्युइन हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि खंभे को पकड़ करके जोर से चिल्लाते हो कोई व्यक्ति, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको छोड़ेगा कौन? उसको खुद ही छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई कहेगा कि मुझे माया से मुक्ति चाहिए, तो भाई माया से मुक्ति तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। कुछ प्रयास करेंगे आप तो परिणाम आएगा, लेकिन हमारे प्रयास ही कमजोर है। क्यों हमारे प्रयास कमजोर है? क्योंकि हमारी इच्छा कमजोर है। हम चाहते ही नहीं कि हमारा उद्धार हो, और हमारा इच्छा इसलिए कमजोर है क्योंकि हमारा भौतिक आसक्ति अधिक है, इसलिए इच्छा को दबा दिया हमने। नहीं चाहिए कृष्ण भक्ति, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी मरने वाला हूँ मैं, जिसके कारण हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए भी ऐसे ऐसे में कई साल बीत जाते हैं,
कई जन्म भी बीत
जाते हैं। यस, कई जन्म बीत जाते हैं, बस ये सोचते हैं आज नहीं करूँगा, ये कल करूँगा, ये कल हमारा काल के बाद आ जाता है, फिर पहले काल आ जाता है और हमारा ख़त्म ही नहीं होता इच्छा। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आज नहीं करूँगा कल करूँगा, कल नहीं करूँगा परसों करूँगा। हमें इसकी इमरजेंसी नहीं पता, हमें इसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती है कि ये कितना आवश्यक है। हम लोग आराम से बैठे हैं, और जिनको पता है कि इसकी आवश्यकता कैसी है, वो संत महात्मा प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स है, शिष्यगण, वो लोग 24 घंटा लगे हुए भगवान के सेवा में, प्रचार में, क्योंकि वो जानते हैं इसकी आवश्यकता कितनी है। तो इस तरह से मिथ्याचारी व्यक्ति जो होता है, आई बिलीव दैट, आप बता पाए ना मैं आपकी वो बात को?
हाँ,
तो मिथ्याचारी व्यक्ति जो होता है, उसके लिए कल्याण का कोई मार्ग नहीं बचता। वो दुष्ट बुद्धि का असुर माना जाता है, उसको कृपा प्राप्त नहीं होती। सो जनरली हम जो कर्म करते हैं, उसके पहले हमने एक चर्चा किया था कि कोई भी कर्म करने का नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। जीव का कर्म है कर्म करना, तो आप कुछ भी करो, बस कर्म करते रहो। भगवद गीता का संदेश क्या है? कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारः अस्ति। कई लोग कहते हैं आपको कर्म किए जाओ, लेकिन भगवान ऐसे ऐसे बेसलेस एडवाइस नहीं देते कभी, कर्म किए जाओ। ये तो क्या बात हुई कर्म किए, कुत्ता भी कर्म करता है, गधा भी कर्म करता है, तो कर्म करना तो कोई भगवद गीता का संदेश नहीं हुआ। लेकिन किस प्रकार से कर्म करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भी भगवद गीता में अध्याय 3 में 9 नंबर के श्लोक से फिर धीरे धीरे भगवान ये योगा का जो सीढ़ी है वो बताना शुरू करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, एक सीढ़ी होती है जिसमें पहला स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है, तीसरा स्टेप होता है, राइट? आप, मैं आपको उसका फिगर भी दिखा सकता हूँ, अपने नोटबुक में आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो, इस प्रकार का जो सीढ़ी, उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे, लेकिन इस चैप्टर के दौरान वो अपने आप आपके सामने प्रकट होगा। अगर आप देखना चाहते हो तो आई जस्ट टेल यू, हाँ, जिस पहले आप ये 9 नंबर का श्लोक का अनुवाद पढ़िए, तब तक आई शो यू द फिगर।
दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे।
Yes. तात्पर्य पढ़िए, कितना बड़ा है? हाँ पढ़िए।
क्योंकि मनुष्य के को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु, दूसरे शब्द में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा ही इस श्लोक में संतुलित किया गया है, कृष्ण भावनावृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम चरता पुरुषेण पर विष्णु, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है, यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि से अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इसमें मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त होती है हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है।
यहाँ पर भगवान 3 से 8 श्लोक तक निष्काम कर्म योग के विषय में भगवान ने बताया संक्षिप्त में, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर ही हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति भौतिक जीवन से अत्यधिक आसक्त है और निष्काम कर्म योग को फॉलो नहीं कर सकता तो उसको क्या करना चाहिए। निष्काम कर्म योग का हमने बात किया था कि कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जिसमें आप फल की इच्छा नहीं करते, फल का कामना या फल से आसक्ति नहीं। एक एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको जिससे इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, जीव जो है वो कृष्ण से अनेक अनेक जन्मों पहले अनादिकाल से विमुख हुआ है, भगवान को भूल चुका है, और भगवान का जो स्थान है परम भोक्ता का वो स्थान वो लेना चाहता है, और इसी के कारण वो कृष्ण का या भगवान का ईर्ष्या करता है। कृष्ण का जो भोग करने का वृत्ति है, ऑफकोर्स वो तो स्वयं भगवान है, लेकिन वो अपनी जेब में हाथ डाले तो उसको भोग नहीं कहते, वो तो अपनी, जैसे आज कल शरद पूर्णिमा था तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो रासलीला करता है कृष्ण, कैसा आदमी है, ऐसा भगवान है तुम्हारा कि जो दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला करता है। लेकिन अगर अपने ही जेब में से अगर कोई कुछ हाथ डालकर कुछ निकालता है तो उसको पाप थोड़ी बोलते, उसको चोरी थोड़ी बोलते। लेकिन हाँ, संसार की सारी सृष्टि तो भगवान की है, तभी संसार में से किसी भी चीज़ को अपनी ही मालिक की है ना वो, तो उसमें से अगर किसी को भगवान अगर अपने आनंद के लिए किसी को उपयोग करता है जिसमें चोरी कैसे हुई। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो दूसरे की संपत्ति को चुरा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान की संपत्ति है। हम जो कर रहे हैं, हम वास्तव में कृष्ण की प्रकृति का भोग कर रहे हैं। भगवान सबके स्वामी। एक व्यक्ति ने कहा कि कृष्णा दूसरों की पत्नी के पास ऐसे लीला किया, तो श्री प्रभुपाद ने उसको जवाब दिया कि दूसरों की पत्नी कैसे, वह संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सभी उनकी पत्नी है, वो तुम्हारी पत्नी भी उसकी पत्नी है। वो सबके मालिक है, कृष्ण तो सबके स्वामी है। तो अपनी ही शक्ति, अपनी ही जो स्वामित्व भगवान के स्वामित्व में जो कुछ भी है, तो भगवान किसी भी दृष्टि से अनिति नहीं है, किसी भी दृष्टि से इमोरल नहीं है। लेकिन ईर्ष्या के कारण बोले वो 16108 शादी किया और एक को मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो ये ईर्ष्या के कारण होता है। तो ये ईर्ष्या जो भगवान से विमुख होने के कारण हमारे में ईर्ष्या होती है, और वही ईर्ष्या फिर हमें विमुख बनाती है, और इसमें 84 लाख किस्म के अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म जनरेट होते हैं। कर्म जनरेट का अर्थ होता है, कर्म का अर्थ ये होता है भौतिक संसार में कि जो भी कर्म हम करते इसको बंद कर सकते हो, जो भी हम कर्म करते हैं उसका अच्छा या बुरा परिणाम प्राप्त होता है। अगर अच्छा परिणाम प्राप्त होता है तो ये हो सकता है कि आपको स्वर्गलोक आदि स्थान में या कुछ अच्छा चीज़ सुख, भौतिक सुख प्राप्त हो। बुरा कर्म होगा तो आपको उसका दुख भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब तक कर्म का जो खाता है बैलेंस वो 0-0 नहीं हो जाता, तब तक आपको भगवान अपने धाम में वापस नहीं ले सकते। जितना हमने किया है वो 0-0 होना चाहिए, और ये साइकिल अनेक 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 जन्मों से शुरू हो चुकी है, करोड़ों करोड़ों जन्मों से शुरू हो चुकी है। मनुष्य योनि में केवल कर्म जनरेट करने की शक्ति है, अन्य जितनी भी योनियां हैं 80 लाख योनि उसमें कर्म का भुगतान होता है, कर्म नए नहीं क्रिएट होते। कुत्ता अगर पाप करेगा तो वो पाप नहीं माना जाता, क्योंकि वो पाप भुगतने में लगा हुआ है, और जो भी कुछ करता है वो पाप भुगतने का काम कर रहा है, वो उसका पाप नहीं होता है। कुत्ते को पाप लगेगा ऐसा कुछ नहीं होता है। वो मनुष्य जो कर्म करता है उसी का ही परिणाम उसको प्राप्त होता है। स्वर्ग का देवता पाप करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वो पुण्य के बल पर स्वर्ग में गया है, और पाप करेगा तो पुण्य अधिक खत्म हो जाएगा, तो पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापिस गिरेगा नीचे। इसलिए समझ लो कि उसने क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहा है पूरे वर्ल्ड में, और क्रेडिट कार्ड में उसके क्रेडिट खत्म होने आएगी तो फिर तो वापिस आना ही पड़ेगा। तो ये स्वर्ग के देवताओं का भी ऐसा है। इसलिए कर्म जनरेशन का जो काम होता है वो यहाँ होता है मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि में भगवान ने ऐसा सोचा कि ये संसार के जो लोग हैं उनको कैसे उद्धार किया जाए। पशु तुल्य बन चुके हैं लोग, कि वह खाओ पियो ऐश करो, इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। आप आजकल देखते हो आप कलयुग में लोगों को एकदम पशु जैसे, उनको बस और कुछ नहीं सोचता, खाना है उनको, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, बस इसके पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं, और किसी प्रकार के नियम, किसी प्रकार का आदेश, किसी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करना उनको, है ना। हाँ, क्या बोलते हैं, नूनम प्रमत्ते कृते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीत आप्रणोति। नूनम प्रमत्ते कृते विकर्मा, व्यक्ति प्रमत्त, प्रमत्त का अर्थ होता है पागल। अब पागल बन जाता है और विकर्म करने लगता है, वो आएगा आपका विकर्म इसी चैप्टर। विकर्म का अर्थ होता है शास्त्र से विपरीत कर्म। शास्त्र बताया कि ये मत करो तो सबसे पहले वही करेंगे, और आजकल ये विकर्म के करने वाले लोगों की संख्या बहुत है। सब विरोध का, बिल्कुल जो ना बोला वही करेगा, जो ना बोला वही। बंदर को ऐसा होता है, बंदर को बोले ना ये नहीं करने का तो सबसे पहले वही करेगा। तो आजकल लोग बिल्कुल उसी तरह से भोग विलास में अपने जीवन को जी रहे। तभी क्या उपाय है, भगवान ने उनके लिए क्या उपाय बनाया है। भगवान ने सोचा कि ये मूर्ख लोग ऐसे समझेंगे नहीं, तो भगवान को तो मानते नहीं है, किसी सत्ता को मानते नहीं है, नास्तिक है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो इस प्रकार के लोगों को भगवान ने एग्जाम्पल, भगवान ने वेद की रचना करके उनको वापस लाने का प्रयास किया है, शास्त्र की रचना करके, वेद शास्त्र की रचना सिस्टम बनाया भगवान ने कि धीरे 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 मनुष्य चार पुरुषार्थ को प्राप्त करे। क्या है चार पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सब कुछ धीरे धीरे होगा, धर्म का पालन भी करेगा, अर्थ कमाएगा, इंद्रिय भोग करेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। तो ये फॉर्मूला बनाया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, जिसमें उन लोग का काम भी हो जाएगा, उनको काम चाहिए, इंद्रिय भोग, तो इंद्रिय भोग भी वहाँ पर दिया गया है। काम की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता रहती है, तो धन के लिए अर्थ का भी प्रयोजन है, इसके अंदर अर्थ भी डाल दिया है। तो चार चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन इसको पूरे सिस्टमेटिकली एक रूप से देखा जाए तो पशु जो लोग हैं, जितने भी पशु है या पशु रूपी मनुष्य है, वो सारे तमोगुण या उससे भी गहरा तमोगुण उसमें गिरे हुए लोग हैं, डार्क डांस, इग्नोरेंस, बड़े रजोगुण तमोगुण में पूरा व्यस्त है। प्रभुपाद कहते हैं ना, रजस्तमा यही सबाई अच्छन्न वासुदेव कथा रुचि ना है से प्रसन्न। प्रभुपाद अमेरिका के तट पर बोस्टन बंदर का वहाँ पर पहुँचे थे जलदूत जहाज से, तो श्री प्रभुपाद जी ने दूर से ये अमेरिका के स्काईलाइनर्स देखे। प्रभुपाद, आई बिलीव कि प्रभुपाद ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी गुजरे होंगे उस समय। तो ये जितने भी स्काईलाइनर वहाँ पर, इट्स वेरी हाईली विजिबल, मैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गया था वहाँ से, ये बड़े बड़े स्काईलाइनर का बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर आपको कहना है किसी को न्यूयॉर्क सिटी कैसा है, तो वहाँ का एक फ़ोटो खींच कर दिखा दो बस, न्यूयॉर्क सिटी कैसा है, ह्यूज बिग बिग स्काईलाइनर, इतने बड़े बड़े टॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग। सो प्रभुपाद उन सबको देख रहे थे कि सर रजा तमस एरा सबाई अच्छा ना, सब लोग रजोगुण और तमोगुण में इतनी बुरी तरह से फंसे हुए, एक मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना, और ये उनके नस नस में फंसा हुआ है, उनके ब्लड में है ये चीज़। और ये चीज़ देखकर प्रभुपाद बड़े दुखी हुए थे। सो यू रोट दैट, तो तमोगुणी व्यक्ति को किस तरह से रजोगुण पे लाया जाए और रजोगुणी व्यक्ति को किस तरह से सत्वगुण पे लाया जाए, तो ये क्रमशः जो उसकी प्रगति हो सकती है किसी व्यक्ति की, ये है वेदों का प्लान, ये है वैदिक सिस्टम, किस तरह से क्रमशः व्यक्ति को धीरे 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 करके उसको अच्छे स्तर पर लाया जाए, यू नो, इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो भी आपका शायद थर्ड चैप्टर में ही आता है, विल टॉक अबाउट इट। चेतना का विकास, धीरे 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 चेतना का विकास होता है। कोई व्यक्ति नींद में है, फिर थोड़ा जगता है, थोड़ा जगता है, ऐसे पूरा जग जाता है, उसको 100% जागरूक बोलते हैं, लेकिन अभी 100% स्लीपिंग अवस्था में। तो समझ लो, एक व्यक्ति था, बड़ा पापी था, बहुत पाप करता था, और उसने मन में ऐसा सोच लिया था, एक ही संसार में एक ही भगवान है, एकल ईश्वर, एक ही भगवान है, वो कौन है? मैं हूँ। संसार में एक ही भगवान है, वो मैं हूँ, और सारी चीज मेरे भोग करने के लिए है, और मैं इतना पाप करूँगा, इतना इंद्रिय भोग करूँगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा व्यक्ति है, तो एक मित्र था उसका, उसने देखा कि ये व्यक्ति इतना पागल है इंद्रिय भोग करने के लिए, विशेष करके सुरासुंदरी इतना पागल है, तो उसको कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, लेकिन वो इतना हितैषी था। तो उसने कहा उस व्यक्ति को कि देखो, तुम अगर कोई अनुष्ठान करोगे, कोई वैदिक अनुष्ठान करोगे तो तुम्हें अधिक सुख मिलेगा। समझ लो तुमने कुछ तपस्या किया, कुछ पूजा कर दिया, कुछ यज्ञ कर दिया, तो तुम्हें अच्छी पत्नी प्राप्त होगी। सूर्य की पूजा करोगे तो तुम्हें स्वस्थ शरीर प्राप्त होगा, तो तुम अच्छे से भोग कर पाओगे। तो उसके मन में वो बात बैठ गई, ये बात तो सही है कि अगर मुझे अच्छा इम्प्रूवमेंट करना है, हेल्थ अगर अच्छा हो जाए और थोड़ा पूजा ही करना है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अच्छा सुख मिल सकता है तो मैं तैयार हूँ वो पालन करने के लिए। तो धीरे से उसका स्पर्श हुआ वैदिक प्रक्रियाओं के साथ, जिसमें पूजा हो सकती है, अनुष्ठान हो सकते हैं, व्रत नियम हो सकते हैं, तो इनडायरेक्टली वो एक सत्ता को मानना शुरू किया, अथॉरिटी को। अभी तक वो किसी अथॉरिटी को नहीं मानता था, अब उसने अथॉरिटी को मानना शुरू किया कि अगर मैं पूजा करूँगा तो मुझे इससे अधिक फल मिलेगा। तो सूर्य के सामने भले नकली सही, लेकिन सूर्य के सामने शीश झुकाएगा। तो धीरे 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 उसका अथॉरिटी को मानने का शुरू हुआ। अभी वो यज्ञ वगैरह करेगा, कर्मकांड करेगा और अपनी इंद्रिय भोग के लिए अधिक प्रयास करेगा। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो शास्त्र में ये चीज बहुत विस्तार से बताई है, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा, ऐसे। हाँ, वेदों में विशेष करके बताइए। तो बाद में उस हितैषी जो मित्र था उसने कहा कि आप बोले तुम इस संसार के सुख की बात करते हो, विशेष समझ लो कि तुम एक सुंदर पत्नी की कामना करते हो ताकि तुम अच्छा भौतिक सुख भोग सको, लेकिन यहाँ का जो सुख है वो स्वर्ग की तुलना में तो कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में जो अप्सराएं है उसके सामने संसार की सबसे सुंदर नारी भी कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, उसकी आँख चौंक जाती है, इतना सुंदर, अरे बहुत सुंदर है वहाँ पर, तो नंदन कानन है, सुंदर सुंदर बाग बगीचे है, और ये फूल क्या है, ये तो फूल, तो इसको फूल थोड़ी बोलते। वो फूल जो स्वर्ग में होता है उसकी सुगंध तो कोशों तक दूर जाती है। और मदिरा, सोम रस जो स्वर्ग में प्राप्त होता है, ऐसा मदिरा इधर कहाँ, स्वर्ग की मदिरा की बात ही अलग है। तो व्यक्ति सोचता है, अरे बाबा मैं तो पागल हूँ, इधर लटका पड़ा हूँ, यहाँ पर सुख भुगतने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से सुखी, अरे ऑपुलेंस तो उनके पास है, स्वर्ग में है ऑपुलेंस, मेरे पास तो ऑपुलेंस है ही नहीं, तो बोले मुझे ले जाओ, मुझे जाना है स्वर्ग में। तो स्वर्ग में तो ऐसे नहीं जा सकते, अरे नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, हाँ स्वर्ग में तुमने पूजा वगैरह नहीं किया, तो वो सब देवता लोग हैं, उनकी तुम पूजा कर रहे थे, तो तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, दूसरा शरीर मिलेगा तुम्हें, अच्छा गुड क्वालिटी शरीर, ये क्या शरीर, इसको शरीर थोड़ी बोलते, अच्छा शरीर प्राप्त होगा स्वर्ग में जाने के लिए फिट। तो व्यक्ति बोले, अच्छा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं सिंपल, कुछ यज्ञ करो, पूजा करो, आराधना करो, स्वर्ग में चले जाओगे, पुण्य करो, दान दो, कुछ पुण्य काम करो, स्वर्ग में जा सकते हो। और बड़े मन लगा करके लगातार लगातार पुण्य कर्म करेगा, ये अच्छा काम करेगा, वो काम करेगा, ये काम करेगा, क्यों स्वर्ग में जाना। अभी स्वर्ग में जाने का इच्छा अपने आप ये क्लियर हो गया कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर तो त्यागना पड़ेगा ना, तो इनडायरेक्टली वो आत्मा को मानने लगा कि नहीं, है ना, कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो अगर स्वर्ग में जाने के लिए मुझे दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, इसका अर्थ हुआ कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और तुम स्वर्ग में जाकर के अधिक सुखी हो सकते हो। तो उधर भी उसको नहीं पता, लेकिन वो मानना शुरू कर दिया उसने कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, और उसको अच्छे भोग मिल सकते हैं स्वर्ग में जाकर के। तो सारा काम करेगा, सब प्रकार के कर्मकांड सबको पालन करेगा, सकाम कर्म करेगा, सब करेगा, और अंत में स्वर्ग जाएगा भी। और स्वर्ग में जब वो जाएगा, इतना भोग करेगा कि भोग करते करते थक जाएगा आदमी, क्योंकि भौतिक सुख की एक सीमा होती है, आध्यात्मिक सुख में ऐसा नहीं होता। आप कोई व्यक्ति अधिक नहीं कर सकता भोग। अगर आपको खीर बहुत पसंद है, खाओ एक चम्मच दो चम्मच, एक कटोरा दो कटोरा, यू नो एक लीटर खा जाओ खीर, लेकिन फिर आप एक सीमा आ जाती है, बस अब नहीं खा सकते। तो इस तरह से व्यक्ति भौतिक सुख भुगतते भुगतते जब उब जाता है, उस समय वो व्यक्ति उसका विदेशी मित्र उसके पास आके फिर बताता है, क्योंकि तुम इसलिए उब गए हो क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, आत्मा से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख में उब नहीं जाओगे, उस सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शरीर के सुख के कारण ही होता है, आत्मा के द्वारा जो सुख प्राप्त होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अभी तुम वैराग्य का मार्ग अपनाओ, अभी तुम तपस्या का मार्ग अपनाओ, ज्ञान का मार्ग अपनाओ, तब फिर वो ज्ञान योग में जुड़ने का प्रयास करता है, ज्ञान ही बनता है। कर्म से अभी ज्ञान ही बन सकता है वो, कर्म योगी से ज्ञान है ना, कर्म से ज्ञानी। अभी वो निवृत्ति वाला मार्ग नहीं करना है, को फिर वो हिमालय में जाएगा, तपस्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, क्यों करना है वो सब, उसको आत्मा के अंदर से सुख प्राप्त कीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वो तू है। तो इस बात को लेकर के बहुत प्रयास करता है और अंत में उसको पता पड़ता है कि एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसका मैं अंश हूँ, और तब जाके उसका ध्यान करना शुरू करता है अपने ही हृदय में, जिसको अष्टांग योग की साधना बोलते हैं। अभी आप समझ रहे हो कि वो कहाँ से शुरू किया था उसने साइकिल उसने, और अभी धीरे धीरे कर्मकांड से कर्मयोग, कर्मयोग से ज्ञान, ज्ञान योग, ज्ञान योग से फिर अष्टांग योग तक पहुंचा। और अष्टांग योग की सिद्धि अवस्था जब उसको प्राप्त हो जाती है, समाधि अवस्था अंत में सक्सेसफुल, तब उसके सामने स्वयं भगवान प्रकट हो सकते हैं चार हाथ वाले। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, आगे तो कुछ आता नहीं इनको, समाधि तो हो गई, अब क्या करेगा। तो फिर तब आता है सेवा, कि भगवान जब तुम्हारे सामने उपस्थित है तो क्या करोगे, सेवा ही करोगे, है ना, सेवा कुछ भी सेवा, एनीथिंग, स्तुति के रूप में या चामर के रूप में भोग किस भी, तब फिर उसकी भक्ति के मार्ग में रुचि शुरू होती है और तब जाकर भक्ति योग की शुरुआत करता है। और फिर वो भक्ति की गहराई को समझता है, भक्ति के गुणों को विकसित करता है और अंततोगत वो सफल होता है। ये हुआ योगा सीढ़ी का छोटा सा उदाहरण, है ना। आप समझ गए शायद मैं क्या बताना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, है ना। हो सकता है कि शायद आप, मैंने अभी तक जो बताई उसमें अलग अलग जो स्टेप्स आए थे सीढ़ी के, जैसे सीढ़ी का आप ड्रॉ कर सकते हो और उसमें स्टेप, पहला स्टेप कौन सा था, फिर दूसरा स्टेप कौन सा था, तीसरा स्टेप कौन सा था, हम आपको दो मिनट दे सकते हैं, जो चर्चा किया उसके आधार पर रफली बनाइए, फिर हमको आपको डिटेल में बताएंगे।
समझाया गया है कि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके पास धन होगा, ये सब चीजें होंगी, तो आप ज्यादा सुख भोग कर सकोगे। तो उसको क्या किया जाता है, इसको प्रवृत्त किया जाता है कि आप सूर्य की उपासना करो, बाकी और नियत कर्म करो, जिसके फल से आप बहुत अच्छा भोग कर सकोगे। फिर उन भोग के, जब भोग की तरफ वो एक नियम पालन करने लगता है, तब उसको ये बताया जाता है कि अगर यहाँ का भोग तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको इससे भी अच्छा भोग करना है तो आप स्वर्ग के बारे में बताया जाता है। फिर वो स्वर्ग जाने के लिए जो भी यज्ञ आदि कर्म है, जो भी दूसरे दान है, वो सब करने लगता है और उनके बल पे वो स्वर्ग भी पहुंच जाता है। इसी जगह पे बताया जाता है कि स्वर्ग में तो ये शरीर नहीं जा सकता, तो आपको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उस वहाँ एक निर्णय हो जाता है कि वो शरीर नहीं है। उसके बाद स्वर्ग में जब वो जाता है तो उन भोगों को भोगता है, तो बहुत भोग करते करते और एक मोनोटोनस टाइप लाइफ जीता है, तो वो फिर उससे भी थोड़ा विच्छिन्न हो जाता है। तब वहाँ अगर कोई उसका मार्गदर्शक ये कहता है कि भाई ये स्थायी सुख नहीं है, अगर आपको स्थायी सुख पाना है तो आपको इस तरह से योग करना होगा, आपको आत्मा के स्तर पर सोचना होगा और आप उन परमेश्वर का ध्यान करना होगा जिससे आपको स्थायी आत्मिक सुख मिले, फिर वो आके फिर तपस्या शुरू कर देता है। जब स्वर्ग से हटता है तो फिर तपस्या करता है और तपस्या करने के बाद एक समाधि स्थिति तक पहुंच जाता है और समाधि स्थिति में श्री विष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में उसको दर्शन हो जाते हैं। अब दर्शन करने के बाद उसके अंदर ये भावना स्वाभाविक रूप से जगती है कि मैं क्या करूँ, दर्शन हो गए तो उन दर्शन के बाद उसको सेवा भाव जगता है। अब सेवा भाव जगता है, अधिकतर लोग वहीं पे जाके रुक जाते हैं, कुछ रुक भी जाते हैं वहीं पे, क्योंकि उनको सिर्फ वहीं तक पाना रहता है और साथ में रह के वैकुंठ लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर उसके कोई ऐसा गाइड है जो कहता है नहीं ये वैकुंठ लोक नहीं है, अभी आपको भगवान श्री कृष्ण का तो परम दिव्य धाम है, उनकी सेवा का कुछ और ही है, फिर वो और सेवा भाव में लग जाता है और अंततः वो प्रयास करते करते अपनी भक्तियों की जो लता को विकसित करता है और अंततः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाता है।
गुड। तो जो सबसे नीचे का सीढ़ी का पहला जो स्टेप था उसको आप क्या कहेंगे, पार्श्विक वृत्ति?
पार्श्विक वृत्ति तो प्रभु जी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा विवेक है, वो उनके लिए प्रयत्न करना चाहता है।
उसके भी पहले का स्टेज?
हाँ, पहले की तो वो तो पास के, वो तो जो भी जीव है, जीव जंतु वाली स्थिति, तो जीव जंतु वाली स्थिति।
हाँ, ओके। तो उसके बाद फिर
चेतना जगती है।
तो आप कौन से योग को आप प्लान में बताएंगे, पहले कौन सा योग आएगा?
पहले तो शुरू में तो सकाम कर्म करने की कोशिश करें, फिर उसको वो चूंकि बताया जाएगा कि अगर आपने इसका रिवार्ड ले लिया तो आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो रिवार्ड छोड़ देता है, छोड़ता है किसी लालच में, लेकिन छोड़ देता है, तो उसको पार्शियल निष्काम योग कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उसका उसका सकाम पूरा छोड़ जाता है, उसका प्योरली निष्काम हो जाता है, क्योंकि जब समाधि स्थिति में पहुंचता है तो निष्काम कर्म से ही समाधि मिल सकती है।
हाँ। सकाम से तो कर्मकांड, फिर कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ये है स्टेजेस, राइट? तो आप संक्षेप में बता सकते हैं आपने क्या बनाया? सीधा योग का ही बता सकते
हैं। सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग और बाद में भक्ति योग।
यस, वेरी गुड। और यस, आप बताइए।
कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग।
ओके। कर्मयोग से पहले आता है कर्मकांड, जिसमें जैसे योग जो है, योग शब्द तभी अप्लाई हो सकता है जब अंतिम लक्ष्य विष्णु है, अन्यथा वो योग नहीं रहता है, वो कर्मकांड है। कर्मकांड में केवल भौतिक इच्छा की पूर्ति है बस, और उसका कोई उद्देश्य ही नहीं है। जैसे ही कर्म उसका सप्लाई बंद हो जाता है तो पूजा भी बंद हो जाती है।
पहले कर्मकांड,
फिर कर्मयोग, फिर निष्काम कर्मयोग। यस, विपिन प्रभु।
विकर्म,
यस, वी कैन कॉल इट विकर्म।
सो जो कर्म मतलब डिजायरस ऑफ फ्रूट्स, आई जस्ट वांट टू एंजॉय इन कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, अष्टांग योग, इसके बीच में ज्ञान योग आएगा। ज्ञान योग और फिर भक्ति योग।
यस, वेरी गुड। परम ब्रह्म प्रभु, आप बताइए।
पहले पशु जैसा जीवन है, उसके बाद है कर्मकांड है, उसके बाद कर्म योग जिसमें निष्काम कर्म आ जाता है, उसके बाद अष्टांग योग है, अष्टांग योग का अंतिम जो स्टेप है वो समाधि है, और समाधि में भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन के बाद सेवा भक्ति योग।
ओके। अष्टांग योग और कर्म योग के बीच, निष्काम कर्म योग के बीच में ज्ञान योग आता है, जिसमें व्यक्ति आत्मा और शरीर का अंतर समझ सकता है बस, लेकिन वो भक्ति के रिलेटेड, जैसे माइनस 10 से 0 तक पहुंचता है लेकिन 0 से +10 तक नहीं जा सकता वो, वो भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का प्रयास में लगा पड़ा रहता है, वो ज्ञान युग में आता है। यस माता, यस
जैसे आप प्रभु जी आप बोले योग तब बोला जाएगा जब हम हमारा उद्देश्य विष्णु को प्रश्न करने का होता है, लेकिन
इतने भी इनडायरेक्टली
लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं,
इतने भी इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली
यस। आप में से माता जी कोई बताइए।
मैं लिखी बट ऐसे इस तरह से
कर्म उसको अभी उसी प्रॉपर वर्ड में आप लिख देना। अच्छा। ताकि आपके लिए एकदम क्लियर पिक्चर रहेगा सामने कि सबसे पहले कौन सा स्टेप बोलेंगे या रंग बोलेंगे जो भी कहेंगे आप उसको लग रहा है। तो आप उसी तरह से आप में से आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, लेकिन आप समझ पाए हम क्या बता रहे हैं? आप मतलब आप कुछ हम शुरुआत किए थे निष्काम कर्मयोग जो तमोगुणी अवस्था है, पशुजन्य वृत्ति जो तमोगुणी अवस्था है, हाँ। लेकिन फिर धीरे 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 उसको रजोगुण और फिर धीरे धीरे सत्वगुण और फिर धीरे धीरे विशुद्ध सत्व की ओर अवस्था में हम उसको ला सकते हैं। इस बीच में अगर कोई व्यक्ति को कभी भी किसी वैष्णव का संपर्क हो जाए तो ये सारे ने सीढ़ी का बहिष्कार करके और सीधा लिफ्ट में बैठ करके ऊपर चला जाएगा भक्ति योग में, और सीधा लिफ्ट खोल के बैक डोर एंट्री है ना कहीं पर भी। एक बार श्री प्रभुपाद ने कहा था कुछ शिष्य लोग लेक्चर में बोल, प्रभुपाद ने कहा कि इतना पालन नहीं करोगे तो तुम भगवत धाम नहीं जा सकते, 100% प्योर होना पड़ेगा। तो सब लोग शिष्य लोग ऐसे शिष्य लोग बाद में बोले कि प्रभुपाद ये तो नहीं हो सकता, बोले कोई बात नहीं 90% प्योर हो जाना, 90% शुद्ध हो जाएंगे तो तभी भी आप भगवान के धाम जा सकते हो। बस तभी ऐसे मोड़ डक गए सबके, अब क्या करें, हाय हाय अब तो प्रभुपाद ने बता दिया तो कुछ हमारा तो हो ही नहीं सकता। फिर प्रभुपाद ने देखा लटका हुआ मुँह है, प्रभुपाद ने ठीक है 80% सिद्ध हो जाओगे तो आपको भगवान के धाम जा सकते हो। तभी भी कईयों के मन में संकोच था, फिर प्रॉपर ने कहा कोई बात नहीं आप 50% भी शुद्ध हो जाओगे तो मेरे पास पिछले दरवाजे की चाबी है, आई हैव बैक डोर एंट्री, तो मैं आपको सीधा आप पीछे के दरवाजे से ले लूँगा भगवान के धाम में, you know, मुक्त कर दूंगा जन्म मृत्यु के चक्र से। तो सो आइडिया इज कि अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त के संपर्क में आता है कहीं पर भी है किसी भी जगह पर है, जैसे आप हमारे बिल्डिंग है 4 फ्लोर है इसमें राइट, तो अभी हर एक फ्लोर पर लिफ्ट है, आप नीचे से लिफ्ट में जा सकते हो। फर्स्ट फ्लोर तक आपको पैदल चले गए सीढ़ी का उपयोग करके, तब तक आपको पता नहीं था कि लिफ्ट है इस बिल्डिंग में, और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद आपको पता पड़ा इसमें तो लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट वहीं फर्स्ट फ्लोर से भी तो लिफ्ट ले सकते हो। कुछ लोग सेकंड फ्लोर पर उसको पता पड़ता है, कुछ लोग को थर्ड फ्लोर पर पता पड़ता है कि लिफ्ट है राइट। लेकिन इसलिए कलयुग में श्री प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही दिन से बता दिया इसमें लिफ्ट है, भगवान के भक्त कभी भी संपर्क में आएंगे उद्धार हो सकता है। लेकिन सकाम कर्म योग, ज्ञान योग, ये दोनों ही, और अष्टांग योग, ये दोनों ही आपको, तीनों ही आपको गारंटी नहीं दे सकते कि आपको ऊपर के फ्लोर पर ले जाएंगे कि नहीं, गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि 100% आप उसको फॉलो करते हो तभी आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जाता है। जैसे बच्चे, हम लोग जब छोटे थे तो टीवी गेम्स खेलते थे, तो टीवी गेम्स में वो मारियो और वो आई डोंट नो व्हाट अभी तो क्या है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट मारियो ऐसा सा आता था हमारे समय में, तो उसमें आप जब तक एक लेवल ख़त्म नहीं करोगे है ना तब तक आपको दूसरे लेवल में नहीं जा सकते, उसको 100% उसके ड्रैगन को ख़त्म करना पड़ेगा तब जाके यू कैन गो राइट। तो जब तक हम ये पर्टिकुलर इस अवस्था में संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर दे,
तब तक आपको दूसरे लेवल पर नहीं ले जा सकते। दूसरे लेवल पर जाने के लिए केवल भक्ति योग ही है, और कुछ नहीं है। आई मीन शॉर्टकट में तो एक ही है, भक्ति योग, और कोई है नहीं शॉर्टकट। सो आई बिलीव कि या थोड़ा समझ पाए तो मे बी मैं समझा पाया हूँ, जिसके इसके अला इसमें इसके संबंधित कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।
सर सबसे प्रभु बता रहे थे कि ये स्टेप है ना, वो सारे स्टेप टूट गए अभी।
अच्छा,
सिर्फ भक्ति योगी स्टेप है।
यस, टूट गए इसका अर्थ है कि इसका पालन नहीं हो सकता। मीन्स वो विधियां है, लेकिन वो विधियां वो सारी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, वहाँ पर कोई स्टूडेंट जाते ही नहीं है। यस, ये सब चीजों के लिए लाइफ स्पैन भी कम है। यज्ञ कैसे करवाओगे, होगा ही नहीं। दान कहाँ दोगे, दान लेने वाला भी कोई ढंग से बैठा नहीं, कुछ भी पवित्र नहीं, कुछ भी नहीं। यज्ञ नहीं हो सकता, योगा कैसे हो सकता है? हजारों मैन का आसपास घूमती है, बिल्डिंग इतने बड़े बड़े, जंगल भी नहीं मिलता है आपको, कहाँ जाओगे जंगल में? इट्स लाइक अ मंकी मेंटालिटी इन अ कॉन्क्रीट जंगल, ऐसा। और फिर वो योगा करेगा। हाँ, वही एक तरीका है, एक प्रकार का हठ योग का, एक कुंडलिनी जो बोलते हैं उससे आपको कुछ एनर्जी प्राप्त होती है वगैरह। लेकिन अष्टांग योग का प्रारंभिक स्टेज आप मान सकते हो। अष्टांग योग का शुरुआत ही होता है यम नियम से, जिसमें डू एंड डोंट्स आता है। कुंडलिनी वाला तो भी वो भी पालन नहीं करता डू एंड डोंट्स, तो क्या अष्टांग योग करेगा वो? जैसे पहला ही होता है यम नियम में ब्रह्मचर्य, और कुंडलिनी वाले को पूछो कितना ब्रह्मचर्य पालन करता है वो, तो ऐसे। लेकिन वो कुछ ऊर्जा शरीर में प्राप्त हो सकती है सिद्धि। एक व्यक्ति मुझे मिला था, वो शक्ति उसके पास एनर्जी पास करता था। आज बहुत होते हैं आजकल ऐसे, आई डोंट नो मैन, लेकिन मैं तो ज़्यादातर लोगों को बिलीव नहीं किया ऐसे एनर्जी पास। लेकिन व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से आया था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, वो वाइट बॉडी फॉरेन, वो ये सब सीखा हुआ था। तो इधर आया था मेरे पास, और वो ऐसे उसने ऐसा दावा किया था कि मैं तुम्हें कुछ तो परिवर्तन ला के दूंगा तुम्हारे शरीर में, ऐसे ऐसा दावा किया था। तो मैं उसके आधा घंटा एक घंटा करीब उसके साथ लेटा रहा, वो शक्ति बुलाता रहा, मैं लेटा रहा उसके सामने। ये भी वृंदावन धाम की बात कर रहा हूँ, मैं वृंदावन धाम में था मैं। ये करते रहे पूरे एक घंटे में मुझे केवल एक झटका लगा था, बस एक झटका लगा, जिसमें आप ऐसा लगा इलेक्ट्रिक शॉक किसी ने दिया हो ना, ऐसे एक झटका लगा बस। और बाकी एक घंटे के बाद कुछ भी नहीं हुआ। और एक घंटे के बाद बोले लाओ पैसा, मैंने कहा भाई कुछ हुआ तो है नहीं। एक झटका लग गया, वो झटका खा तो मैं ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी को आ चढ़ा, तो झटका तो लग ही जाता था। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट द पॉइंट इज कि अष्टांग योग का उद्देश्य ये सब नहीं है। कि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 20 किलो वेट उतार दिया, पर 20 किलो वेट उतारने के लिए अष्टांग योग थोड़ी है, ये तो हठ योग है। तो आप जिम में भी जाकर कर सकते हो, 20 किलो तो ऐसे भी उतर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो लेकिन भक्त जो होते हैं उसका भगवान के साथ कनेक्शन होने के कारण, अगर भक्त भी अगर सकाम कर्म में जुड़ता है, भक्त भी अगर निष्काम कर्म में जुड़ता है, फिर भी उसका पतन नहीं होता। लेकिन जो योग में नहीं, जो भगवान के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो व्यक्ति चाहे निष्काम कर्म योग में हो या सकाम कर्म योग में हो, उसका पतन हो सकता है। तो इस विषय में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मे बी हम आने वाले कुछ दो चार श्लोक ले रहे, तो इट इज़ गुड वी कैन कंप्लीट द चैप्टर इन प्रॉपर टाइम। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 10।
सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी।
सृष्टि के भगवान ने कितना स्पष्ट रूप से अर्जुन को पूरा बताया, इन द बिगिनिंग ऑफ सृजन की शुरुआत से ये भगवान ने सिस्टम बनाया कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो तुम क्या करो, जो सप्लायर्स है डेमिगॉड्स उनको संतुष्ट करो। डेमिगॉड्स को तुम संतुष्ट करोगे, आप डेमिगॉड जनरली संतुष्ट कैसे होते हैं, जैसे आप देते हो ना अग्नि में आहुति, उसमें तो कुछ अनाज होता है हल्का सा जव तल, राइट, वो तो आपको लगता है उसमें क्या अग्नि में डालने से वो क्या पेट भरता है किसी का, यू नो। लेकिन हमारी जो आहुति है वो स्वर्ग के देवताओं का मेरिट बढ़ा सकता है, यू नो, हैप्पी दे कैन दे फील नरिशमेंट, तो वो लोग आपको इसके सामने आपकी रिक्वायरमेंट से जैसे फल फूल पौधा अनाज इत्यादि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और ये साइकिल चलता है, आप उनको प्रसन्न करो वो आपको खुश करेंगे और इस तरह से तुम्हारी साइकिल चलती रहेगी और धीरे धीरे तुम्हारा अर्थ काम और अंत में मोक्ष उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। सो भगवान ने शुरुआत की कर्मकांड लेवल से, कर्मकांड की स्थिति से भगवान ने इस बात को शुरू किया कि किस तरह से तुम अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो इस यज्ञ आगादि से पूरा कर सकते हो। अभी आगे के श्लोक में क्या बताया गया है वो पढ़िए।
यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त
होगी। हाँ, आपस में सहयोग होगा तभी क्या होगा, यज्ञ करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण को तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट करेगा ही ना, प्रिष्ट जो यज्ञ करवा रहा है तो उसको तो बोलेगा यस सर आप जैसे बोलो, है ना, तभी ब्राह्मण सत्वगुणी व्यक्ति है और ब्राह्मण का रिस्पेक्ट करेगा, इसका अर्थ हुआ कि उसने सत्वगुण का रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। बुद्धिशाली व्यक्ति सोचेगा भी सही कि ये कितना अच्छा है ब्राह्मण, वेदों में भी उसको श्रद्धा होएगी, ब्राह्मण कहेगा कि नहीं ये मुहूर्त ठीक नहीं है, आधे घंटे के बाद होगा तो स्वीकार करेगा, है ना, क्यों वो ब्राह्मण जो बोलेगा उसमें श्रद्धा होगी, उसको वेदों में श्रद्धा हो जाती है, ब्राह्मण में श्रद्धा हो जाती है। हालांकि कृष्ण का ऐसा इच्छा नहीं है कि तुम भोग भुगतते रहो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक अभी बच्चे को सीधा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कोई बीमार व्यक्ति को सीधा धीरे धीरे एक एक करके ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप भगवान उसको लाना चाहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं, 11 या 12 में,
जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है।
यहाँ भगवान ने स्पष्ट बता दिया कि तुम्हारा जो सप्लाई है वो देवताओं से आता है, वरुण देव पानी जल देते हैं, इंद्र देव वर्षा देते हैं, फिर वायु देव हवा देते हैं, पवन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फिर पृथ्वी अनेक अनेक प्रकार की औषधियाँ फल फूल इत्यादि देते हैं, चंद्र जो है वो आपको स्वाद देते हैं, ऊर्जा देते हैं, सूर्य ऊर्जा देते हैं, तो इस प्रकार से अनेक अनेक देवी देवताएँ जो है, अनेक अनेक देव, ये लोग क्या करते हैं, हमें सहायता कर रहे हैं, और अगर उनकी सप्लाई को उनको दिए बिना, इन अदर वर्ड्स, अगर भगवान को या देवताओं को अर्पण किए बिना अगर हम खुद भोगते हैं तो चोरी है ना, दूसरे का माल उठा रहे हैं, चोर उसको ही बोलते हैं कि ये दूसरे की संपत्ति को उठाता है, उसको चोर बोलते हैं। तो विदाउट ऑफरिंग देम, अगर कोई ऑफर किए बिना ऐसा करता है देवताओं को, तो उसको निश्चित रूप से चोर माना जाता है, और चोर को क्या होता है, दंड दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर अर्जुन है ना, ये सोच सकता है, जैसे वो चोर का मेंटेलिटी कैसा था कि कोई भगवान जैसा कुछ है नहीं, कोई असुर वसुर कोई असुर जैसा सोचता है, वैसे वेदों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे साइंस के माध्यम से हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, हम तो आर्टिफिशियल रेन भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है भगवान की। लेकिन शास्त्र में उसको पनिशमेंट का बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति को पनिशमेंट मिलता है, तो कई बार पनिशमेंट के डर से, उसके चक्कर से एटलीस्ट व्यक्ति ड्यूटी बाउंड हो जाता है, ठीक है मैं करूँगा, अगर तुम ये नहीं करोगे देखो ना संभालना, ये हो जाएगा ना, तो व्यक्ति सोचता है नहीं तो करना ही पड़ेगा। तो हालांकि वो तरीका अच्छा नहीं है, भय के माध्यम से उसको करवाना वो तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है तो इससे तो अच्छा है भय से करवाना, है ना, जैसे इस्लाम में भय से करवाते, इस्लाम में अगर तुम बुरखा नहीं पहनोगे तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, तुम ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, वो कर दो ये कर देंगे, ये दंड मिलेगा वो दंड मिलेगा, तो डर के मारे होएगा हमने करना पड़ेगा लाइक दिस। तो इस तरह शास्त्र में कुछ पनिशमेंट की बात की गई है कि इसको दंड मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन फिर अर्जुन ने ऐसा सोचा कि इससे तो अच्छा है कि अपने ओरिजिनल प्लान पे चले जाते। ओरिजिनल प्लान क्या था? हाँ ना, ओरिजिनल प्लान क्या था? जंगल में चले जाना, भिक्षा मांगना, ये झंझट में पड़ना ही नहीं है किसी के प्रकार के चक्कर में, युद्ध करने के चक्कर में ड्यूटी से भागो। तो ये वो ऐसा सोच रहा था कि मैं ना मुझे यज्ञ करने हैं, ना मुझे देवताओं को प्रसन्न करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं अपना भिक्षा मांग करके जीवन कर लूँगा। देवताओं से कुछ लेंगे तो देवता कुछ देना पड़ेगा ना, और देवताओं को देने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ना हमें देवताओं से कुछ चाहिए और ना मुझे देवताओं को देना पड़े, तो क्या करेगा, भिक्षा मांगूंगा जंगल में जा करके। तो इसलिए भगवान ने उसको आंसर दे दिया आगे वाले श्लोक में, पढ़िए।
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
हाँ, इसलिए भगवान ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। पाप केवल जो आप भिक्षा मांग के खाएगा तो भी देवताओं को तो देना ही पड़ेगा, अर्थात मुझे तो देना ही पड़ेगा, भगवान को तो देना, वो ऑफर किए बिना तो तुम खा ही नहीं सकते, नहीं तो पाप खाएगा। वो बोला भिक्षा मांग के खाऊंगा, क्या खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, पाप खाएगा। तो अन्यथा जो लोग अपने लिए ये पचंती आत्मकारणात् भुंजते थे त्वघम पापा, ये आपके वो कुछ एक संप्रदाय है जो इस श्लोक को बड़ा बल देता है, बोलता है कि ये श्लोक खाने से पहले एक बार बोल देने का, है ना, पूरे गुजरात के हर गांव में फैला हुआ है, तो अरे जमीन पर पांव रखने से पहले ये श्लोक बोलो, भोजन शुरू करने से पहले ये यज्ञ शिष्टा सुनो संत चिंत सर्वखिल विषय भुंजते थे तो हम पापा ये पचंते आत्मकारणा, ऐसा बोल करके तुम भोजन खाओ, ऐसा सब बताते हैं, अच्छी बात है, भगवद्गीता के श्लोक का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कहता है कि मुझे अर्पण करके खाना है, देवताओं को अर्पण करके खाना है, इस तरह से तुम अपने कर्म फल से मुक्त हो सकते हो, अर्थात जो कुछ भी तुम प्राप्त कर दो, केवल भोजन नहीं, जो कुछ भी प्राप्त करते हो सब कुछ तो देवताओं की ओर से प्राप्त होता है, उनको अर्पण किए बिना तुम कैसे कर सकते हो, खा सकते हो। फिर आने वाले दो श्लोक है उसमें एक साइकिल बताइए, उसके बाद फिर हम आप आज का यहाँ पर समाप्त करेंगे और उसको आपको संक्षिप्त में बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो अब बताइए आने वाले दो श्लोक कौन से हैं?
सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।
और दूसरा एक 15वां,
वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी कि परम ब्रह्म से प्रकट हुए है, कुलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है।
ये साइकिल भगवान ने बताया अर्जुन को, देखो भाई अन्नाद भवन्ति भूतानि, हर एक व्यक्ति को जीने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, अन्न के बिना न मनुष्य रह सकता है न पशु रह सकता है। कोई कहेगा मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अन्न की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा किसको खाते हो तुम? पशु को खाते हो। पशु किस पर रहता है? वो तो अन्न के ऊपर रहता है, वो थोड़ी मांस खाता है ना। तो पशु अन्न पर आधारित है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, ये पूरा संसार आधारित है अन्न के ऊपर। अन्नाद भवन्ति भूतानि, लेकिन अन्न कैसे, मशीन में फैक्ट्री में तो बनता नहीं अन्न, तो कैसे होता है? तो वर्षा से आता है। तो भाई वर्षा तो हमारे हाथ में है नहीं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न तभी संभव हो सकता है जब पर्जन्य होगा, बारिश, तब बारिश तो हो नहीं पाती, हमारे बस में तो है नहीं बारिश लाना। एक बार रशिया में प्रभुपाद चल रहे थे और किसी भक्त ने कहा, रशिया में नहीं, एक भक्त बता रहे थे रशिया के विषय में, ऑस्ट्रेलिया में एक चीज प्रभुपाद को बता रहे थे, तो प्रभुपाद ने उसको, उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद ने उनको पूछा कि हु वाज दैट पर्सन, गुरुकेश ने पूछा कि, गुरुकेश ने प्रभुपाद को कहा कि रशिया धान्य की आयात कर रहा है, फूड ग्रेन्स उसके आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, मंगवा रहा है बाहर से। तो प्रभुपाद ने कहा why can't they produce there, वो रशिया में क्यों, इतना बड़ा देश है, हजारों माइल भूमि ऐसे ही पड़ी है बिना कोई उपयोग के, वहाँ पर क्यों नहीं पका लेता, आयात क्यों करना ये धान्य की? तो प्रभुपाद ने कहा कि इतना बड़ा रशिया है लेकिन उनके पास बारिश नहीं हो रही। हरीश्वरी प्रभु ने उत्तर दिया कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, इसलिए इतनी ज़मीन का भी कोई फ़ायदा नहीं। तब प्रभुपाद ने कहा देखो ये हुई बात, अब बारिश तुम्हें यज्ञ करना नहीं तो बारिश होगी नहीं, यज्ञ करना नहीं लेकिन अन्न खाना है, धान चाहिए उसको, चिकन, हाफ चिकन लॉजिक, मुर्गी होती है उसका आधा हिस्सा वो आगे से दाना खाता है, तो कॉस्टली है, रोज खर्चा कराता है, तो दाना देना पड़ता है उसको, और पीछे अंडा देता है उसमें इनकम आती है, और अंडा बेच सकते हैं हम, तो क्या करें, पीछे का हिस्सा रखते हैं, आगे का हिस्सा काट के फेंक देते, इसको बोलते हैं हाफ चिकन लॉजिक, अर्ध कुकुटी न्याय इसको बोलते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि यज्ञ उनको करना नहीं और अन्न चाहिए, तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि वास्तव में हर एक व्यक्ति अन्न के ऊपर निर्भर करता है। श्री प्रभुपाद ने उनको बताया कि एक बार ऐसा हुआ था 1942 में बंगाल में बहुत अकाल आया था उस समय, और वहाँ पर कैसा सिचुएशन था कि 25 पैसे में जो चीज़ मिलता था अन्न जितना, उसका प्राइस सीधा 10 रुपया हो गया तुरंत, और उस समय तो बहुत माना जाता था, बहुत 500-700 गुना ज़्यादा, 10 रुपीज़ इज़ वेरी मच। उस समय प्रभुपाद ने कहा कि उस समय मेरे फैमिली में 10 लोग थे, मैं, मेरा पत्नी, मेरे 5 बच्चे, एक नौकर और भी 2-3 लोग थे, तो 5 लोग थे, 10 लोग थे हमारी फैमिली में, और मैं अकेला था धन कमाने वाला, लेकिन भगवान की कृपा से मैं तो अफोर्ड कर सकता था इतना महंगा अन्न, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि लेकिन जो भगवान के भक्ति में जुड़ा हुआ होता है, सेवा में जुड़ा होता है, उसको सर्वाइव भगवान करवाते हैं, भगवान उसको सर्वाइव करते हैं, लेकिन जनरली बाकी सब लोगों को वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवंती पर्जन्या, यज्ञात भवंती, और बारिश आती है यज्ञ करने से, और यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे हो सकता है? ड्यूटी, अपने नियत कर्तव्य कर्म करने से। नियत कर्तव्य कर्म कहां पर है? वेदों में। क्या है नेक्स्ट श्लोक? 15वां।
वेदों में नियमित कर्मों
का श्लोक,
और वे वेद
श्लोक श्लोक श्लोक
कर्म
ब्रह्मोद्भवम विधि। हाँ, यस। तो कर्म वेदों में बताया है, वेद भगवान ने बनाया है, तो अंततः तो वो भगवान के पास ही जाता है। आप समझे, अन्न से शुरुआत होती है हमारी, और अन्न की आवश्यकता, और फिर धीरे 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 हमने ये साइकिल फॉलो करते हैं, और फिर भगवान की ओर जाता है, और फिर हमारी जो आवश्यकता है वो फिर भगवान पूरी करते हैं। सो इस तरह से संक्षेप में हमने आपसे चर्चा किया कि इस तरह से ये यज्ञ साइकिल काम करता है। हम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, स्वतंत्र नहीं बन सकते, हम डिपेंडेंट है अन्न के ऊपर। तो ये सोचते हो कि नहीं, मुझे तो किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, आई एम माई सेल्फ इनफ, तो नहीं हो पाएगा, आप डिपेंडेंट ही रहेंगे हमेशा। सो आई स्टॉप हियर 15 श्लोक पर। इसकी जो छोटी एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, जो थीमेटिक एक्सरसाइज जिसमें रोल प्ले है, एक छोटा सा ड्रामा है, तो ड्रामा हम अगली बार आपसे करवाएंगे, बिकॉज इट मे टेक सम टाइम। तो हम आपके साथ अभी चर्चा करना चाहते हैं ऐसे के विषय में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आई नो कि आज अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम है कंपैरेटिवली भक्तों की, लेकिन आप लोग बाद में शेयर कर लेना जो लोग नहीं आए उनसे। तो शास्त्र में जो स्टडी है, शास्त्रिक स्टडी, उसको बताने के लिए इस्कॉन एक संस्था जिसने बड़े अच्छे ढंग से, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें संस्था का निर्माण करके दिया। हालांकि संस्था वही है, संस्था तो नया नाम है, बाकी परंपरा तो वही कृष्ण से चलती आती है। उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया है और इंस्टीट्यूशन बनाया है ताकि वो सिद्धांत लंबे समय तक चल सके, अन्यथा मोमेंट तो वही है चैतन्य महाप्रभु की और कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर। सो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, लेकिन जब हम संस्था में है तो हमें संस्था के आधार पर जो सिस्टम बनाई जाती है उसको हमें सीखना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है आने वाले कई पीढ़ियों तक ये कृष्ण भक्ति का जो संदेश है या भगवान का जो इच्छा वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमारा ये बड़ा आवश्यकता होता है कि हम शास्त्र के सैद्धांतिक जो ज्ञान है उसको ढंग से समझें। अगर आप सिद्धांत का पालन करेंगे तो आने वाले कई पीढ़ियों तक इसकी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से हम गलत हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी पीढ़ियाँ डिबेट हो जाएगी या हम भी डिबेट हो जाएंगे, है ना, हम पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, और फिर ये बड़े बड़े जो धर्म संप्रदाय होते हैं वो क्यों लंबा नहीं चलते, कोई 20 साल तो कोई 100 साल, कोई 50 साल, ऐसे उससे अधिक नहीं चलते, है ना। तो ऐसे एक सर्वे हुआ था कि 1000 ऐसी संस्थाएं में से कोई एक ही संस्था ऐसी होती है जो 100 साल से अधिक रह सके और जिसके 1,00,000 से अधिक अनुयायी हो। तो हमने हमारी संस्था को ऑलरेडी 50 साल तो हो ही चुके हैं और हमारे 1,00,000 से अधिक अनुयायी तो है, लेकिन आने वाले 50 साल तक भी अगर इसको सही सुरक्षित रखना हो तो आप सब जो भक्ति शास्त्री पढ़ने वाले भक्त है, आप लोग को इसको समझना पड़ेगा ढंग से, ताकि आने वाली पीढ़ी आपसे फ़ायदा उठाएगी। आप जो करोगे लोग देखेंगे, आप जो नहीं करोगे उसको भी लोग देखेंगे। तो आपको इसको गंभीरता से लेने के लिए शास्त्र के आधार से सिद्धांतों को समझना है। तो शास्त्रिक श्रेणी में 12 एम्स बताए गए हैं। इसको संस्था ने शास्त्रिक स्टडी करने के पश्चात अगर आप भक्ति शास्त्री पास कर लिया तो क्या अपेक्षा की जाएगी? लोगों की अपेक्षा भी होगी ना आपसे कि आप तो भक्ति शास्त्री पढ़े हो, प्रभु जी मत जी आप तो पढ़े हो भक्ति शास्त्री, बताओ बताओ क्या सीखे, है ना? आपका क्या, आपका आचरण में कोई परिवर्तन आया, आपके विचार में कोई परिवर्तन आया, आपकी प्रचार करने की शैली बदल गई, सोचने का ढंग बदल गया, क्या हुआ कुछ बताइए। तो एक अपेक्षा लोगों की हो सकती है, एक अपेक्षा आपकी अपनी हो सकती है कि भाई मैं इतना पढ़ा कोर्स करके अभी कुछ तो मुझे मिलना चाहिए ना, है ना? या फिर आपके गुरुजन से आपकी अपेक्षा होगी कि भाई तुम भक्ति शास्त्री क्या कम से कम इतना तो पालन करोगे, है ना? तो कुछ एम्स होते हैं, कुछ प्राप्त करना है, कुछ अचीव करना है। तो क्या अचीव करना है इस कोर्स के माध्यम से, वो हमने पहले चर्चा किया था आपसे, संक्षिप्त में उसको फिर से दोहरा रहा हूँ मैं आपको। 12 एम्स है टोटल, वो प्राप्त होने चाहिए हमारे पूरे कोर्स के दरमियान। तो ये 12 एम्स में पहला एम्स है नॉलेज, ज्ञान। हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें मेमोरी एंड रिकॉल, अर्थात हमारी स्मृति, हमारा शास्त्रीय शास्त्र के विषय का जो ज्ञान है वो सब स्पष्ट हो सकता है। कई चीज़ ऐसी होती है कि जो हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब हम ये शास्त्र का कोर्स करते हैं या आध्यात्मिक स्टडी करते हैं तब जाके हमें पता पड़ता है कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा ये बात है, ये बात है, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते। फिर दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आप कंसेप्ट क्लियर होते हैं आपके, आप वस्तु को समझ सकते हैं ढंग से प्रॉपरली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी कर दी, आप सिद्धांत को ढंग से समझ नहीं पाए, आपका कंसेप्ट गलत हो गया, तो उससे क्या होता है कि वो फिर बाद में ट्रेडिशन बनता है और ट्रेडिशन के बाद फिर प्रिंसिपल बन जाता है, है ना? आप जो करते हो आपके आने वाली पीढ़ियाँ बिल्कुल वही करती है क्योंकि आपको देख रहे हैं, तो एक परंपरा बन जाती है ट्रेडिशन कि भाई इसको अहमदाबाद वाले भक्त तो इस प्रकार की परंपरा फॉलो करते हैं, है ना? दो हाथ उठा करके ही प्रणाम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी श्री प्रभुपाद जी ने हमें कभी नहीं सिखाया ऐसा कि दो हाथ उठा करके प्रणाम करना, जैसे पहले एक बार दो हाथ उठाओ भगवान को दिखाओ कि देखो मैं आ गया हूँ और फिर प्रणाम करो, या फिर जो भी भावना है आपके हृदय में कि मैं विनम्र हूँ, मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ, जो भी भावना है। लेकिन कोई कह सकता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रभु जी अगर हाथ उठा के प्रणाम करें इसमें कौन सा वैष्णव अपराध हो जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको देखने वाले लोग भी तो सीख रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। वो आपको देखने वाले लोग सीख रहे हैं और ये सीखने वाले लोग आगे दूसरे को सिखाएंगे, दूसरा तीसरे को सिखाएगा, 10-20 साल के बाद ये ट्रेडिशन बन जाएगी कि भाई प्रणाम तो है ऐसा ही होता है, पहले हाथ उठाना पड़ता है ऊपर और फिर प्रणाम करना होता है, है ना? और फिर 50 साल के बाद कुछ लोग सिद्धांत के रूप में इस्कॉन में GBC के अंदर दाखिल करवा देंगे कि बोले इस्कॉन में पूरे इस्कॉन के पूरे वर्ल्ड में सबको प्रणाम करना है तो ये नया तरीका लागू किया जाए, क्या? हाथ ऊपर उठाओ फिर प्रणाम करो, तभी आप समझे ना कहाँ नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद ने नहीं सिखाया हमें ऐसा, तो क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि मेरे मन में आया, इसलिए, क्योंकि मुझे अच्छा हो लग रहा है इसलिए, नहीं। तो ये है कंसेप्ट का प्रॉब्लम, ये तो एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत सारी चीज होती है कि कंसेप्ट में अगर इतना भी अगर बैच रह गए, कुछ चीज नहीं समझ पाए कि फिलोसॉफिकल कहीं चूक हो गई, अगर वो रह गया उसके मन में, तो आने वाले 10 साल के बाद वो व्यक्ति वही पकड़ के बैठेगा, हरिनाम दीक्षा भी लेगा, ब्राह्मण दीक्षा भी लेगा, फिर उसके मन में तो वही रहेगा। आप समझे ना जो त्रुटि कंसेप्ट, तो ये क्लियर हो जाती है भक्ति सबसे कम। यस
तो भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद भगवतम का ज्ञान, चैतन्य चैतन्य और सारे कई प्रभुपाद जी की बुक से उसका ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ये जो वैष्णव एटिकेट्स जो है उसकी बुक तो मिलती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल कोई क्लास नहीं होता है, वो होना चाहिए।
नहीं, आपकी बात सही है, वो होना चाहिए, जब जब आवश्यकता हो तो उससे प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ कोर्सेस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भक्ति शास्त्री कोर्स है, तो आप पूरे भक्ति शास्त्री कोर्स में अधिकतर जो एटिकेट्स है वो कवर हो जाते हैं। हालांकि उसको पुस्तक के वाइज बताया गया है, भगवद गीता के श्लोक माध्यम से, उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत है, तो उसके माध्यम से ज़्यादातर चीज तो आ जाती है। लेकिन जैसा आप बता रहे हो कि वैष्णव एटिकेट को लेकर के कोई कोर्स हो सकता है, यस, उसको पढ़ाना चाहिए और इसको सिखाना भी चाहिए, इसका कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सब जगह से एटिकेट इकट्ठा करके अगर आप किसी को सिखाते हैं या हम सीखते हैं कहीं से, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक हम प्रमाणित नहीं हो जाता, यू नो, तब तक हमें उसको सैद्धांतिक रूप से लागू नहीं करना चाहिए।
ज्यादातर प्रभु जी इस्कॉन में वरिष्ठ भक्त जो सीनियर होते हैं वो भी पहले ये करते हैं फिर प्रणाम करते हैं।
वही तो मैं बता रहा हूँ,
कई बार देखा है। हाँ। फिर हम नहीं करते तो हमको ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भक्त करते हैं और हम नहीं करते।
इसलिए एक चीज हमें ध्यान रखना है, आपका अच्छा प्रश्न उठाया आपने ये कि वरिष्ठ भक्त कई बार ऐसा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं, हाँ देखो मैं तो भक्ति शास्त्र किया तो मैं तो वरिष्ठ भक्तों से भी बढ़ गया और मुझे तो अभी इतना अच्छा नॉलेज आ गया कि मुझे ये भी पता पड़ गया, मुझे तो वो भी पता पड़ गया। नहीं, ये भावना अच्छा नहीं है। वरिष्ठ भक्त है, यद्यपि उनके आचरण में कहीं त्रुटि पाई जाती है, फिर भी उनका आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति को हमसे पहले या हमारी हमसे अधिक गहराई से उन्होंने लेने का प्रयास किया। हालांकि कुछ चीज़ों में उनकी त्रुटियां हैं क्योंकि उन्होंने इसको इतना गंभीरता से सीखा नहीं है, इसलिए और लोग क्या कर रहे हैं इतना हमें नहीं सोचना चाहिए। मुझे क्या करना है, हमें केवल उसको ही सोचना चाहिए कि मुझे सिखाया गया है कि मुझे ये नहीं करना है। जैसे भगवान को जब भोग लग रहा होता है ऑल्टर में, तो भोग लगते समय भगवान को प्रणाम करना अपराध माना जाता है, उस समय भगवान को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, भोग लगता है तब। लेकिन इन बातों को कई भक्त, कई बार वरिष्ठ भक्त भी ऐसा देखा जाता है कि वो इस नियम का पालन नहीं करते और फिर कहे प्रभु वो तो नहीं करते, मुझे क्यों कहते हो, आप उनको बोलो, उनको देख के मैं सीखता हूँ। अरे भाई, उनको करना है कि नहीं करना तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम अपना विमान खुद चलाओ, वो अपना विमान खुद चलाएंगे, तुम भगवत धाम जाओगे, वो भी भगवत धाम है, वो अपना अपना आप अपना संभालो, दूसरों का क्यों सोचते हो। तो इसलिए अगर कोई वरिष्ठ भी आपके सामने ऐसा लगे कि वो नियम का पालन नहीं कर रहे, तो हमें पैनिक नहीं होना है, छोड़ करने दो उनको, जो करना है हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। हाँ ठीक है, अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप उनकी ऑथोरिटी तो नहीं हो सबसे पहले, है ना, आपकी बात तो ना वो सुनने वाला है और ना ही आप उसके गुरु हो या आप उसके वरिष्ठ हो कि आप उसको समझा सकते हो, है ना। तो इसलिए उनका हिसाब किताब उनके पास रखो, हमें जो करना है वो हम करेंगे, है ना। इसलिए जरूरी नहीं कि आप, कई बार छोटा सा अहंकार आ जाता है कि अब तो मुझे ये सीख लिया तब तो वरिष्ठ भक्तों से भी मुझे अच्छा पता है, ये सब नहीं, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे हमारी भक्ति रुक जाती है। इसलिए उन वो लोग क्या करते हैं मत सोचो, हमें क्या करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। हम सीखे हम नहीं करेंगे, ये सोचना। जैसे मैंने आपको बता दिया अभी दो चीज कि भोग लगे तो प्रणाम परिक्रमा नहीं होनी चाहिए, प्रणाम नहीं करना चाहिए, फिर हाथ उठा करके प्रणाम करना ये भी सही नहीं है, फिर वो नहीं कीर्तन में नित्यानंद पिछले कई बार गाते हैं, पीछे गाते हैं बोलते हैं, तो वो इतना विशाल फैला हुआ नहीं था पहले, लेकिन आजकल बहुत जगह फैल गया ये नित्यानंद, पीछे बोलना जोर से नित्यानंद से बोलते, वो वास्तव में एक प्रकार का डिविएशन के रूप में मैं तो देखता हूँ, क्योंकि ये विष्णु प्रभुपाद जी ने कभी नहीं सिखाया। एक्चुअली गलत नहीं है एक रूप से, लेकिन आज वो ट्रेडिशन बन रही है, और ट्रेडिशन बाद में सिद्धांत बन सकता है कि भाई जब भी आगे जाके बोले तो नित्यानंद बोलना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। यस
जी, एक फॉरेनर डिवोटी का, कुछ चार ही डिवोटी थे, वो फॉरेनर डिवोटी कीर्तन कर रहे थे, और किसी को भी रास्ते से कोई भी आ रहा है तो उसको बोलेंगे गौरांग, वो बोलेंगे गौरांग, तो बाद में वो गौरांग नित्यानंद, गौरांग नित्यानंद, तो ये जो कर रहे वो तो
नहीं, 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 मैं तो दूसरा बता रहा हूँ।
ओके,
जैसे वो बोलते है ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो जोर से बोले बोले नित्यानंद, और नित्यानंद बोलते जोर जोर से सब बोलेंगे एक पूरा ग्रुप। तो नित्यानंद फिर दो हाथ जोड़कर दंडवत प्रभु, अरे भाई दंडवत करना है तो पूरा करना, अभी दंडवत ही करना है तो पूरा दंडवत कर, हाथ जोड़ के क्या दंडवत कर रहा है, लेकिन ये ट्रेंड हो गया है दंडवत पर भैया, क्या दंडवत, फोन पे भी बोलेगा दंडवत पर, अरे दंडवत क्यों बोल रहे हो तुम, कर रहे हो क्या दंडवत, नहीं कर रहे हो ना तो फिर प्रणाम बोलो, अगर प्रणाम ही करना है तो प्रणाम बोलो, दंडवत क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये धीरे 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 ट्रेंड बन रहा है ना, फिर
करते ही नहीं है सिर्फ प्रणाम ही करते हैं लेकिन बोलते दंडवत
है। अरे गालियां देते हैं दंडवत के पीछे, क्या बात करते हो आप, लेकिन फिर भी दंडवत बोलते हैं, एटलीस्ट कम से कम ऐसा तो नहीं करना है। आई नो वन सेक्रेटरी ऑफ यू नो इजोलिनस राधानाथ स्वामी, गुरु जी से फोन पे बात करेंगे ना तो वो पहले क्या करेंगे, फोन महाराज का आवाज सुनेगा ना फोन पर, तो जहां पर भी होंगे उधर दंडवत कर देंगे पूरा, जहां पर भी होंगे फोन पर भी पूरा दंडवत करेंगे, वेर एवर ही इज, और फिर खड़े होकर महाराज से बात करते हैं फोन पर, दिस इज एक्चुअली दंडवत, इसको दंडवत बोल सकते हो आप, लेकिन वर्बल लिप सर्विस क्या है, दंडवत दंडवत दंडवत, व्हाट इज दिस एनीवे, बट आई एम नॉट सपोज टू स्पीक लॉट ऑफ थिंग अबाउट कंसेप्ट, लेकिन हम आपको ये बता दें कि इसको अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो ये गलत दिशा ले सकता है। फिर होता है पर्सनल एप्लीकेशन, जो हमने सीखा वो हमारे आचरण में कितना हमने लिया, जैसे अपना पर्सनल एप्लीकेशन व्यक्तिगत उसका आचरण, जिसमें मेरे लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था तो मैंने शास्त्र के आधार से अगर इसको मैं देखूं तो मुझे ये चीज अनुभव हुई, मेरे में ये परिवर्तन आया, अपने पर्सनल एग्जांपल, पर्सनल लाइफ का एग्जांपल, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेरे मित्र के साथ ऐसा हुआ था। तो जब भी आप ऐसे लिखते हो ना तो ये 12 एम को कवर करना होता है, ऐसे में ये चीज़ों को कवर करनी होती है, ये 12 एम्स जो है उसको कवर करना है। कोई भी ऐसे तभी अच्छा लगता है जब आप अपने अपने जीवन की कुछ घटना भी बताओ उसके अंदर, या किसी और का ऑब्जर्वेशन या एनीथिंग लाइक दैट, प्रॉपर लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो वो ऐसे ज़्यादा अच्छा है। फिर पर्सनल एप्लीकेशन के साथ प्रीचिंग एप्लीकेशन, कि प्रचार में आप कैसे इसको उपयोग कर सकते हो, जैसे आपने भगवद गीता में सीखा कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु होना है, ऐसा नेत्व जातम जातु ना सुन न तुम ने में जनाधिपा, मायावाद समझाया सेकंड चैप्टर के है ना 12 नंबर के टेक्स्ट में मायावाद, तो जब आप प्रचार करते हो मायावादियों के साथ तो कौन सी आर्ग्यूमेंट आपको रख सकते हो, कौन सी चीज़ आप बता सकते हो मायावाद को लेकर के, तो ये प्रीचिंग एप्लीकेशन हुई, जैसे मायावाद है या भौतिकवादी व्यक्ति है, देवताओं के उपासक है, तो ऐसे लोगों के साथ आप प्रचार कैसे करोगे, तो ये सीखना यह है प्रीचिंग एप्लीकेशन। पहले था अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या परिणाम इसका परिवर्तन, ये प्रचार के सेवा में क्या आप कर सकते हो, इसके प्रीचिंग एप्लीकेशन बोलते हैं इसको। फिर होता है फेथ एंड कन्विक्शन, मैं 5 मिनट ज्यादा ले सकता हूँ, 10 बज गया। तो फेथ एंड कन्विक्शन, फेथ एंड कन्विक्शन में हमारी भक्ति के मार्ग में, शास्त्र में, गुरु में, भगवान में, वैष्णव में श्रद्धा बढ़ती है। भगवद गीता के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। इसका भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, शास्त्र का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अभी तक मैं ऐसा सोचता था कि शायद भक्ति करने से अधिक और कुछ भी हो सकता है अच्छा, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि कृष्ण भक्त के सिवा और कुछ है ही नहीं। कृष्ण को प्रसन्न करना या गुरु या श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने से अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। इसका पूरा श्रद्धा हो गया, प्रभु जी अब मुझे कोई नहीं हिला सकता। अब मुझे कितना भी स्वयं भगवान आकर भी अगर मुझे बोल दे कि तू मेरी भक्ति नहीं कर, तभी मैं नहीं मानूंगा। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास, कृष्ण कर्म कैले सर्व कर्म कृता होय, कृष्ण भक्ति करना ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, ये मुझे अब गहरा विश्वास हो गया। गुरु में मुझे गहरा विश्वास हुआ है, प्रभुपाद जी में मुझे गहरा विश्वास हुआ है। तो ये इसका एक आउट, ये 12 जो है ये अचीवमेंट है, इसमें एक ये है श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम ये श्रद्धा के आधार पर देखा जाता है, किस में कितनी कमजोर श्रद्धा है और किस में कितनी अतुट श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा हमारी विकसित होती है इसके आधार से, ये कोर्स के माध्यम से। फिर अथॉरिटी, अथॉरिटी का अर्थ होता है शास्त्र इज द फाइनल अथॉरिटी। मेरा मानना, आपका मानना, इसका अपना कोई महत्व नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं ये फाइनल डिसीजन है, इसको शास्त्र की अथॉरिटी पे हम मानना शुरू करते हैं। कि वैदिक शास्त्र अगर एक बार बोल दिया कि मैं गलत हूँ, फिर मैं चाहे कुछ भी करूँ मैं गलत ही हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, शास्त्रों में शास्त्रों की अथॉरिटी, गुरु की अथॉरिटी, भगवान की अथॉरिटी को मानना, जो वो कहते हैं वही सच है, शास्त्र कहते हैं वही सच है, इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। तो ये है अथॉरिटी, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर सातवां है थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। थियोलॉजिकल एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप शास्त्र के माध्यम से जो कुछ सीखते हैं वो उसका उपयोग आप करते हो अलग अलग व्यवहारिक जीवन की घटनाओं में। समझ लो कि किसी व्यक्ति का कोई रिश्तेदार गुजर गया है फॉर एग्जाम्पल, तब आप उसको ठीक करना, उसको समझाना चाहते हो, तो हो सकता है आप चित्रकेतु महाराज का एग्जाम्पल दे सकते हो, हर्ष शोक वाला, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। शास्त्र का आधार से, जैसे भी आप अन्ना धोंद भूता न्याय चर्चा किया, आपका नेक्स्ट थर्सडे को जो रोल प्ले होने वाला है, जो आप ड्रामा करने वाले हो, ये ड्रामा इसी आधार पर करने वाले हम, थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। व्हाट इज दैट, थियोलॉजी, थियोलॉजी शास्त्र के आधार से उसका उपचार करना, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज जो होते हैं, मोरल, सोशल, यू नो, अलग अलग प्रकार के जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, घटनाएं जो होती है, उसको शास्त्र की दृष्टि से, भाई दो भक्त आपस में झगड़ रहे हैं तो क्या किया, इसका शास्त्र के आधार से क्या हो सकता है। फिर आप सोचोगे इंद्र का और पृथ्वी माता का झगड़ा हुआ था, यू नो, वो आपको मिलता है 34 स्कंद में श्रीमद् भागवत में, तो उस समय क्या किया गया था, तो उसको प्रॉपरली स्टडी करके फिर आप ये दो भक्तों के झगड़े को सॉल्व कर देते हो। तो ये हुई थियोलॉजिकल एप्लीकेशन। तो ये सीखना चाहिए कि शास्त्र में जो उदाहरण जो सिखाया है उसके आधार से प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में हमें उसका उपाय, उसको थियोलॉजिकल एप्लीकेशन बोलते हैं। फिर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम कितना सीखे, हमारा भौतिक आकर्षण कितना कम हुआ, हमारा आध्यात्मिक आकर्षण कितना, हमारा अपना एक प्रकार का परीक्षा, हमने कितना प्राप्त किया आध्यात्मिक जीवन में, हम ये समझ सकते हैं। जब हम सुनते तो हमें पता पड़ता है कि प्रभु जी अभी भी मुझ में कमी है, अभी भी मैं विनम्र नहीं हो पा रहा हूँ, अभी भी मुझे मान की इच्छा हो जाती है, अभी भी मुझे लोगों को दिखाने की इच्छा है कि लोग मुझे सलाम भरे, लोग मेरी गिनती करें कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी एक वैष्णव हूँ। तो ये सब प्रकार की कुछ कमियां है, लेकिन वो इवेल्युएट होती है कि हाँ ये ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, इसको इवेल्युएशन बोलते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है इवेल्युएशन करना। फिर होता है मूड एंड मिशन, नौमा। मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न हो इन 12 एम्स में, तो आप अगले बार पूछना। तो 9 नंबर में है मूड एंड मिशन। श्रील प्रभुपाद जी का जो मूड और उन्होंने जो मिशन स्थापित किया है चैतन्य महाप्रभु का, वो मिशन के प्रति हमारा जागरूक अवस्था, मिशन और स्पिरिट, जो जिसमें ये मूड और मिशन का भावना स्थिर होता है, वो बैठ नहीं सकता, स्ट्रांग होता है, यू नो, वो बैठा नहीं सकता, उसको वो उसको प्रचार में बहुत लगा हो जाता है, वो बैठ नहीं सकता, वो इस संस्था को कैसे आगे मैं बढ़ाऊँ, इस आंदोलन को कैसे मैं आगे बढ़ाऊँ, ये प्रचार कैसे अच्छा होगा, इसको अहमदाबाद किस तरह से फ्लरिश हो सकता है, यू नो, ही इज वेरी मच इनटू इट, यू नो, वो भावना विकसित होती है मूड और मिशन के रूप में। तो ये 9 नंबर, राइट। फिर 10 नंबर में है एकेडमिक एंड मॉरल इंटीग्रिटी, शैक्षणिक और मॉरल, नैतिक, शैक्षणिक और नैतिक इंटीग्रिटी अर्थात निष्ठा, जिसमें जो आप सीखे उसको यथारूप दूसरों को बता सकते हो, अर्थात आप गुरु को धोखा नहीं देंगे, गुरुजनों को, शास्त्र को, किसी को धोखा नहीं देंगे, इंटीग्रिटी, बी लॉयल टू दैट, यू नो, आप वफादार, निष्ठावान रहते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आगे जाके किसी को पढ़ाओगे, तो आपके गुरुजनों ने आप पर श्रद्धा विश्वास किया कि आप पढ़ा सकते हो, इसलिए आपको कुछ सेवा दिया कि आप ये कार्य करो, लेकिन फिर आप उसका दुरुपयोग करोगे, आप लॉयल नहीं रहेंगे, आप वफादार नहीं रहोगे, और आप अपने हिसाब से कुछ मनगढ़ंत कुछ बताओगे, यू नो, तो आप अप्रामाणिक हुए, तो आप लॉयल नहीं हुए। तो ये इंटीग्रिटी हमें आती है एक एकेडमिक, शैक्षणिक और नैतिक, ये ईमानदारी हमें आती है। तो ये हुआ 10 नंबर। फिर है 11 नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, सीखने की वृत्ति, जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कोई सिखाएगा तभी मैं सीखूंगा, यहाँ से इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सीखना आध्यात्मिक जीवन में निरंतर चलेगा, लाइफ टाइम। आप अगर हरिनाम दीक्षा लिया, ब्राह्मण दीक्षा लिया, संन्यास ले लिया, गुरु बन गए, फिर भी आपका सीखना चालू रहेगा, सीखने का जिम्मेदारी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, तो ये हमें ध्यान में रहना चाहिए कि जब जिस दिन आप ये सोचोगे कि अब मुझे लर्न करने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, मैं सब सीख गया, उस दिन आपकी भक्ति का पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि भक्ति निरंतर सीखने की क्रिया का नाम है, निरंतर आप सीखते हो। अगर आप ये समझते हो या कोई ऐसा समझता है कि मैं सब कुछ सीख लिया है, तो बेचारा बहुत दुखी है, वो आगे जाके गिरेगा। तो लर्निंग, रिस्पॉन्सिबल ऑफ लर्निंग, और यस, कुछ बता रहे थे,
लास्ट
12 है शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु का अर्थ होता है हर एक वस्तु को आप शास्त्र की दृष्टि से देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप देखते हो कि किसी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु ये शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित नहीं है, ये शास्त्र चक्षु हुआ। 3 गुणों का प्रभाव किस तरह से किसी मनुष्य के ऊपर कार्य कर रहा है, ये शास्त्र चक्षु हुआ। फिर कोई व्यक्ति क्यों अधिक लोभ में फंसा हुआ है, ये शास्त्र चक्षु हुआ। ये व्यक्ति पापमय कर्म में क्यों जुड़ा हुआ है, वो शास्त्र चक्षु। मीन्स हर एक चीज को आप शास्त्र के दृष्टि से देखते हो, ज्ञान चक्षु। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु सा। अगर कोई जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ और 3 गुणों में किस तरह से फंस जाता है, ये साधारण जीव नहीं समझ सकते, लेकिन ज्ञान चक्षु वाले, शास्त्र चक्षु वाले जो लोग हैं, भक्त है, वो समझ सकते। तो ये है 12 एम्स आपको प्राप्त करना है ये कोर्स के माध्यम से। तो ये जब तक ये 12 एम को हम समझेंगे नहीं, तब तक ये हमारी जो भक्ति है, आई मीन ये कोर्स है भक्ति शास्त्री का, ये कोर्स हम सही समझ नहीं पाएंगे इसको। इसमें से ये 12 चीज़ हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो आपके जो भी ऐसे है, वो ऐसे के अंदर ये 12 एम्स को सब एक साथ नहीं आएंगे, कुछ आंसर में केवल एक एम होगा, जैसे अंडरस्टैंडिंग वाला आएगा, लेकिन कुछ में दो तीन आ सकते हैं, कुछ में तीन चार आ सकते हैं, यू नो। तो इस तरह से ये एम्स कई बार आपको बताए जाएंगे कि ये एम्स को आपको इसके अंदर लिखना है, ये एम्स को फोकस करना है, ऐसा आपको बताया जाता है। अगर आपको ये क्लोज बुक एग्ज़ाम जो है, वो क्लोज बुक एग्ज़ाम में मिनिमम पासिंग मार्क होते हैं 50%, मिनिमम पासिंग मार्क 50% से नीचे आएगा तो आपको दूसरा करना पड़ेगा, फिर से अटैम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ, क्लोज बुक में उसमें मिनिमम 50%, और ओपन बुक जो है ऐसे राइटिंग, उसमें फाइनल एग्जाम के मिनिमम पासिंग मार्क 70% है। अब 70% एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको दूसरा अवसर दिया जाएगा इसमें कि अगर आप ढंग से नहीं लिख पाए तो आपको सहायता दी जाएगी, ठीक है, आप ये चीज़ को आप इम्प्रूव कर लीजिए तो आपके 70% आ जाएंगे। अभी आपको पूछेगा प्रभु क्यों ये परसेंटेज वाला झमेला है, क्यों 70% को हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं कि आप जो सीखो वो प्रॉपर सीखो। इसलिए जब तक आप उसको ढंग से समझ नहीं पाएंगे या हम उसको फिर से बताते ही रहेंगे आपको वो चीज़, तो 70% अगर आपको ऐसे में मार्क चाहिए तो मिनिमम 4 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। आपके ऐसे में 4 चीज़ कवर होनी चाहिए मिनिमम, अगर वो 4 चीज़ कवर होंगी तो आपका 70% आ सकता है। तो मैं बता दूँ वो 4 चीज़ें अभी, तो मैं ऑलरेडी वी आर 5 मिनट्स अहेड, चलेगा दो मिनट और। ओके, तो एक है सैद्धांतिक रूप से फिलोसॉफी के रूप में करेक्ट होना चाहिए, सबसे पहला इस फिलोसॉफी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि देवताओं और भगवान सब ऐसे, तो सब एक ही है, तो अब वो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो वो सही होना चाहिए, परफेक्ट। दूसरा है एक वैष्णव के सोच के अनुसार लिखना है, कोई भौतिकवादी की सोच के अनुसार नहीं, एक भक्त के आधार से, भक्त की विचार के आधार से वैष्णव एटीट्यूड उसके अंदर प्रकट होना चाहिए, कि ये ऐसे पढ़कर कोई कह सके कि ये किसी भक्त ने लिखा है, तो ये वैष्णव एटीट्यूड उसके अंदर कवर होना चाहिए। तीसरा होता है कि आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो दिया जाता है वो सब्जेक्ट के अनुकूल रेफरेंसेस दे और कोर्स दे, अप्रोप्रिएट रेफरेंस की भगवद गीता के एक श्लोक में ऐसा बताया गया है और भक्ति रसामृत में ऐसा कहा है या उपदेशामृत में चैतन्य चरितामृत ऐसा कहा है, लाइक दैट, जैसे प्रभुपाद ने अपने लेटर में ऐसा कहा था, लेक्चर में ऐसा कहा था, ऐसा कोई प्रॉपर रेफरेंस होना चाहिए, इधर उधर का नहीं, उससे संबंधित हो वही। और चौथा है जो 12 एम्स है उसमें से जो भी बताया जाए वो एम उसके अंदर कवर होने चाहिए, कम से कम 1, 2, 3 जितना उसके अंदर आ सकता है, ये एम को फोकस करना चाहिए कि ये एम अर्थात ये 12 जो पॉइंट बताए हैं उसमें से कोई एक पॉइंट उसके अंदर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऐसे एक प्रकार का प्रेजेंटेशन ही है, जैसे आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है और उसको आपको विस्तार से समझाना है प्रॉपरली, जैसे आप उसके लिए आप सोच सकते हो, भक्तों की सहायता ले सकते हो, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, वेदाबेस खोल के पढ़ सकते हो, भक्तों को पूछ सकते हो, MP3 लेक्चर सुन सकते हो, भागवतम खोल सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते बस। किसी ने लिखा है उसकी कॉपी नहीं कर सकते, आप अपने शब्दों में लिखना है, अपने अनुभव लिखना है, अपने विचार लिखना है, तभी वो ज़्यादा आकर्षक लगता है ना, दो लोग तो बाकी सब लोग लिखते हैं उसे। अगर आपको 70% से अधिक मार्क चाहिए तो क्या कर सकते हो आप, कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं 70% से अधिक। क्या? एक तो जो भी आप रेफरेंस देते हो वो एकदम एक्यूरेट और असाधारण हो, एकदम फिट बैठते हो उसको रेफरेंसेस,